आगे सबक देखिए भाई। फईदा तजव्वज अल मजूसी उम्महू अबिबनतहू सुम्मा अस्लमा फुर्रिक बैनहुमा लिअन्न निकाह अल महारिमि लहू हुक्मुल बुतलान फीमा बैनहुम इंदहुमा कमा ذكرना फिल मुतद्दति ووجب التعرض بالإسلام فيفرق وعنده له حكم الصحة في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة لأنها لا تنافيه। भाई गुजश्ता सबक में साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया था कि अगर एक आजाद औरत है और उसका निकाह एक गुलाम से हुआ है, वो गुलाम के आका से कहती है आतिक हु अन्नी बी अल्फिन कि इस गुलाम को मेरी तरफ से 1000 दिरहम के इवज आजाद कर दो, और आका ने फिर उस गुलाम को आजाद कर दिया। तो हमारे नजदीक ये आजादी जो है गुलाम की, ये आमिर की तरफ से होगी, यानी वो जो हुक्म देने वाली औरत है उसकी तरफ से आजादी होगी, और यहां पर इक्तिजाअन जो है बै को माना जाएगा। वजह यह कि उसने कहा है कि मेरी तरफ से आजाद कर दो, हालांकि यह बात मुमकिन ही नहीं है कि गैर का गुलाम जो है दूसरे की तरफ से आजाद हो जाए। तो उसके कलाम की तसहीह के लिए जरूरी है कि वहां पर इक्तिजाअन बै को माना जाए। फुकहा की कोशिश होती है कि किसी भी आकिल बालिग के कलाम की तसहीह की जाए, ऐसी सूरत पर महमूल किया जाए कि वो बेकार और लग्व न हो बल्कि उसका फायदा हो। और यहां पर मुमकिन भी है कि जब बीवी ने कहा कि इसको मेरी तरफ से आजाद कर दे, तो गोया वो मुतालबा कर रही है कि पहले मुझे इस गुलाम का मालिक बना दो और फिर मेरी तरफ से इसको आजाद कर दो। और फिर जब गुलाम के आका ने कहा आतक तू, मैंने इस गुलाम को आजाद कर दिया, तो वो बीवी के इन दोनों मुतालबों पर अमल कर रहा है। बीवी ने क्या दो मुतालबे किए थे कि मुझे इसका मालिक बना दो और फिर मेरी तरफ से आजाद कर दो। तो ये जो आका ने आतक तू कहा, इसमें बीवी को मालिक बनाना भी है और फिर उसकी तरफ से आजाद करना भी है, और मालिक बनाया है इवज के साथ, क्योंकि औरत ने इवज जिक्र किया था, तो यह बै है। यानी यहां आतकतू के जिमन में इक्तिजाअन बै को भी माना जाएगा, और फिर उसके बाद उस औरत की तरफ से आका वकील बनकर उस गुलाम को आजाद कर देगा। तो इस तरह ये आजादी जो है उस औरत की तरफ से हुई, तो लिहाजा औरत मालिकन बनी अपने खावंद की। और मैंने आपको बतलाया था कि मिलके निकाह मिलके रकबी के साथ, यह यूं कहें मिलके निकाह मिलके यमीन के साथ जमा नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि मिलके निकाह ज़ईफ है, उसमें एक दूसरे पर मनाफ़ या एक दूसरे पर हुकूक के मालिक होते हैं। खावन बीवी से मुनाफिया का मालिक है और बीवी भी बस हुकूक की मालिक है अपने खावन पर, जबकि मिलके रकबी के अंदर तो पूरी जात का मालिक इंसान बन जाता है। तो लिहाजा जब आला दर्जे की मिल्कियत आ गई तो उसके साथ अब अदना दर्जे की मिल्कियत बाकी नहीं रह सकती, वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा जब बीवी अपने खावन की मालिक बनी तो साथ ही निकाह फासिद हो गया, लिहाजा अब इनको फिर नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला इस मसले में फरमाते हैं कि यह बात महाल है कि किसी का गुलाम दूसरे की तरफ से आजाद हो जाए, लिहाजा जब आका ने आतक्तु कहा तो यह गुलाम आका ही की तरफ से आजाद हुआ, औरत की तरफ से आजाद नहीं। और जब औरत अपने खावंद की मालिक नहीं बनी तो निकाह भी फासिद नहीं है, जबकि हमारे नजदीक ये निकाह फासिद है, क्योंकि यहां इक्तिजाअन बै को माना जाएगा उस औरत के कलाम को दुरुस्त करने के लिए, उसके बगैर उसके दुरुस्त होने की कोई सूरत नहीं, और यहां दुरुस्त करना मुमकिन भी है कि इक्तिजाअन बै को मान लिया जाए। उसके बाद दूसरा मसला जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि अगर औरत इवज जिक्र किए बगैर कहती है आतिक हो अन्नी कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो, और फिर आका ने उसको आजाद कर दिया, तो तरफेन फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर औरत इस गुलाम की मालिक नहीं बनी, क्योंकि वो हिबा का तकाजा कर रही है और हिबा के अंदर कब्जा जरूरी है, कब्जे के बगैर हिबा ताम नहीं होता, यानी वो दूसरा शख्स उस चीज का मालिक नहीं बनता। और कब्जा तो एक फेल हिस्सी है और यहां पर तो कोई कब्जा नहीं पाया गया। तो आका ने जब गुलाम को आजाद किया तो वो आका ही की तरफ से आजाद हुआ, तो बीवी गुलाम की मालिक न बनी। जब मालिक नहीं बनी तो अब दोनों का निकाह भी फासिद नहीं। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये और पहला मसला एक ही जैसे हैं। जैसे वहां पर बीवी ने जब कहा था कि मेरी तरफ से आजाद कर दो, तो उसने तमलीक का भी मुतालबा किया था कि मुझे मालिक बना दो और फिर मेरी तरफ से आजाद कर दो, तो यहां पर भी बीवी तमलीक का भी मुतालबा कर रही है और कह रही है मेरी तरफ से आजाद कर दो। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां वो मुतालबा कर रही थी कि मुझे इवज के साथ मालिक बनाओ, क्योंकि उसने इवज जिक्र किया था, और यहां वो मुतालबा कर रही है कि बगैर इवज के मुझे मालिक बना दो। और बगैर इवज के मालिक बनाने को हिबा कहते हैं। तो गोया औरत मुतालबा कर रही है कि ये गुलाम मुझे हिबा कर दो और फिर मेरी तरफ से वकील बनकर इस गुलाम को आजाद कर दो। तो जैसे वहां पर आका ने आतक्तु कहा था और उस आतक्तु के जिमन में हमने इक्तिजाअन बेअ को भी मान लिया था, तो यहां पर भी जब आका आतक्तु कहेगा तो इस आतक्तु के जिमन में हम इक्तिजाअन हिबा को भी मान लेंगे। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हिबा के अंदर तो कब्जा जरूरी है, लेकिन यहां कब्जे का एतबार साकित हो जाएगा। कहते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी शख्स पर कफारा जिहार आया था और उसने फिर अपने किसी साथी से कहा कि तुम मेरी तरफ से ये 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, तो अब वो गोया वो अपने साथी से ये मुतालबा कर रहा है कि मुझे पहले खाने का मालिक बनाओ और फिर मेरी तरफ से वकील बनकर वो फुकारा को खिला दो, फुकारा को दे दो। और फिर उसका वो साथी फुकारा को वो ताम खिला देता है या वो गल्ला उनमें तकसीम करता है और उनका मालिक उन्हें बना देता है। तो बिल इत्तेफाक तीनों अइमा के नजदीक ये इत्आम ताम जो है ये आमिर की तरफ से होगा, यानी जिसने हुक्म दिया था, और उसका कफारा जिहार अदा हो जाएगा। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे उस मसले के अंदर हिबा को बगैर कब्जे के ही मान लिया गया था, तो यहां पर भी हिबा को बगैर कब्जे के ही इक्तिजाअन साबित कर दिया जाएगा। तो ये औरत जो है ये इस गुलाम की मालिक बनेगी और फिर गुलाम आजाद हो जाएगा, लिहाजा इस सूरत में भी निकाह फासिद हो जाएगा। जबकि तरफैन फिर जवाब देते हैं कि भाई हिबा के अंदर कब्जा साकित नहीं हो सकता, क्योंकि ये नस के जरिए साबित है, हदीस के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तसिहुल हिबतु इल्ला मकबूजतन, कि हिबा बगैर कब्जे के दुरुस्त नहीं है। तो हदीस से पता चल गया कि हिबा के अंदर कब्जा साकित हो ही नहीं सकता, कब्जे के साकित होने का यहां कोई इहतमाल नहीं, जबकि बैअ के अंदर ईजाब और कबूल साकित हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि बैअ की एक किस्म है बैअ तआती, जिसके अंदर ईजाब और कबूल के बगैर बाय और मुश्तरी आपस में जो इवज़ैन है उनका आपस में तबादला कर लेते हैं। बाय जो है वो मबिया हवाले करता है और मुश्तरी जो है समन दे देता है और कोई ईजाब और कबूल नहीं करते, तो ये बैअ तआती है। मैंने बताया ये अता से है, अता अता का माना कोई चीज किसी को देना, अता करना, तो यहां दोनों जानिब से अता है, बाय मबिया दे रहा है तो मुश्तरी समन दे रहा है, तो ये बैअ तआती है। तआती बाबे तफाउल है भाई, दोनों तरफ से अता पाई जा रही है। तो देखो बैअ के अंदर ईजाब और कबूल साकित होने का भी इहतमाल रखते हैं, उनके बगैर भी बैअ हो सकती है जैसे बैअ तआती के अंदर है। तो बैअ के अंदर तो ईजाब और कबूल साकित हो सकते हैं, लेकिन हिबा के अंदर कब्जा साकित नहीं हो सकता। और नीज वहां हमने इक्तिजाअन बैअ को साबित किया था पहले मसले के अंदर, इसलिए क्योंकि बैअ भी कौल का नाम है यानी ईजाब और कबूल का, और आतक्तु भी क्या था, कौल था, तो एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को साबित माना जा सकता है, लेकिन एक कौल के जिमन में कब्जे को यानी फेल को साबित नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि कौल और चीज है और कब्जा और चीज, या यूं कहें कि कब्जा एक फ़ेल हिस्सी है और बै जो है वो फ़ेल शरई है भाई, तो ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं भाई। मैंने आपको बतलाया था कि अब फुकहा फरमाते हैं अफ़ाल दो किस्म के हैं, कुछ को अफ़ाल हिस्सिया कहते हैं और कुछ को अफ़ाल शरईया कहते हैं। अफ़ाल हिस्सिया वो हैं कि जिनके माना में शरीयत ने कोई तब्दीली पैदा नहीं की, शरीयत के आने से पहले इसका जो माना लोग समझते थे शरीयत के आने के बाद भी उनका वही माना है। जैसे जिना, शरीयत के आने से पहले भी जिना का यही माना समझा जाता था कि गैर मिल्कियत के अंदर सोहबत कर लेना, यानी कि ऐसी औरत जिसका इंसान मालिक नहीं है उससे क्या कर ले, सोहबत कर ले, इसको जिना कहते थे। और शरीयत ने भी इसी माना को बरकरार रखा, शरीयत ने इस माना में कोई तब्दीली पैदा नहीं की, तो यह जिना जो है यह फ़ेल हिस्सी है। जबकि फ़ेल शरई वो है जिसके माना में शरीयत ने तब्दीली पैदा कर दी। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की कि इस्लाम से पहले बै जो है मुबादलतुल माल बिल माल को कहते थे कि माल का तबादला किया जाए माल के बदले, लेकिन शरीयत ने आकर बतलाया कि नहीं, यहां तराजी की कैद भी मोतबर है कि दोनों में आपस में बाहमी रजामंदी होनी चाहिए। सिर्फ मुबादले को बै नहीं कहते बल्कि बाहमी रजामंदी के साथ मुबादले को बै कहते हैं। तो देखो शरीयत ने बै के माना में तब्दीली पैदा कर दी, तो इसको फ़ेल शरई कहेंगे। यानी इस फेल को शरीयत के आने से पहले लोग जानते ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था बै किस चीज का नाम है। शरीयत ने आकर उनको बतलाया कि बै इस चीज का नाम है, जो कुछ तुम आज तक समझते रहे हो वो बै नहीं है बल्कि ये है बै भाई। तो इसको क्या कहते हैं, फ़ेल शरई, क्योंकि शरीयत ने आकर यह फेल बतलाया। तो फ़ेल हिस्सी और फ़ेल शरई एक दूसरे की जिद हैं। जो फ़ेल हिस्सी है वो फ़ेल शरई नहीं और जो फ़ेल शरई है वो फ़ेल हिस्सी नहीं है। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि कब्जा एक फ़ेल हिस्सी है, यानी फ़ेल का नाम है, ऐसा फ़ेल जो हिस्सा नजर आता है कि इंसान क्या कर ले, एक चीज पर कब्जा कर ले। और जबकि बै जो है वो एक तसर्रुफ़ शरई है, यानी तसर्रुफ़ शरई कौली है, यानी कौल की कबील से है। और आतकतु वो कौल है, तो आतकतु के जिमन के अंदर तसर्रुफ़ शरई कौली यानी बै को तो साबित किया जा सकता है, लेकिन आतकतु कौल के जिमन में फ़ेल हिस्सी को साबित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई, वही बात, यानी एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को तो इक्तिजान साबित किया जा सकता है लेकिन एक कौल के जिमन में किसी फेल को इक्तिजान साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फेल एक हिस्सी चीज है जो आंखों से नजर आती है और वो तो यहां मौजूद नहीं, यानी वो कब्जा हिस्सी तो यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा इस आतकतु के जिमन में कब्जे को साबित नहीं माना जा सकता। और जब कब्जा साबित नहीं माना जा सकता तो आमिर मालिक ना बना, वो औरत इसकी मालिक ना बनी, तो ये गुलाम आका की तरफ से ही आजाद हुआ, लिहाजा ये निकाह फासिद नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और नीज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस मसले को कियास किया था इताम ताम वाले मसले पर, तो उसका भी जवाब दिया कि इताम ताम वाले मसले में तो वो जो फकीर है वो आमिर जो हुक्म देने वाला है उसका नाइब बनकर अव्वलन कब्जा करता है, जैसे जकात के अंदर है। जकात जो है वो हक शरा भी है, अल्लाह का हक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। और नी जकात फकीर का भी हक है क्योंकि वो माल फकीर को मिलता है, इससे उनकी मदद हो जाती है। तो जकात हक शरा भी है और हक अब्द भी है। अब जब कोई शख्स जकात देता है तो फकीर के हाथ में जब जकात अव्वलन आती है तो ये जो फकीर अव्वलन कब्जा करता है ये अल्लाह का नाइब होकर कब्जा करता है, यानी अल्लाह पहले इस माल का मालिक बन गया और फिर अल्लाह की तरफ से किसको पहुंच गया, फकीर को पहुंच गया। तो हकुल्लाह भी अदा हुआ और हकुल अब्द भी अदा हो गया। फकीर को पहुंचना चाहिए था, पहुंच भी गया, और अल्लाह की तरफ से पहुंचना चाहिए था तो वो फकीर ने जो कब्जा किया पहले अल्लाह की तरफ से कब्जा किया और फिर उसका कब्जा अपने लिए हो गया। तो हुक्म देने वाली अल्लाह की जात थी, तो जब फकीर ने कब्जा किया तो अव्वलन आमिर यानी हुक्म देने वाले की तरफ से कब्जा किया, तो यहां पर भी इत्आम तआम के अंदर जब वो फकीरों को गल्ला उनमें तकसीम कर रहा है तो फिर इस सूरत में भी जो फकीर कब्जा करेगा वो फकीर अव्वलन उस पर कब्जा करेगा आमिर की तरफ से नाइब होकर, जैसे वो जकात के अंदर अल्लाह की तरफ से नाइब होकर कब्जा करता था फकीर, तो यहां पर भी फकीर वो जो आमिर है हुक्म देने वाला जिसने इताम ताम का हुक्म दिया था उसकी तरफ से फकीर अव्वलन कब्जा करेगा, तो इससे वो हिबा ताम हो जाएगा और फिर उसके बाद फकीर अपने लिए कब्जा करेगा तो वो आमिर की तरफ से फिर फकीर को पहुंच गया। जबकि इताक वो तो इतलाफ का नाम है कि इंसान अपना माल तलफ कर रहा है, उसको जाया कर रहा है, तो दुनियावी एतबार से तो अपना माल जाया कर रहा है कि गुलाम हाथ से निकल रहा है, किसी को उसका मालिक नहीं बना रहा, तो ये क्या है? इतलाफ है, अपने माल को जाया करना है। इसी तरह है जैसे आप अपनी गाड़ी जला दें या कोई और चीज तोड़ दें, जाया कर दें, तो ये भी इतलाफ है। तो इताक दुनियावी एतबार से क्या है? इतलाफ, माल को जाया करना, अगरचे उखरवी एतबार से इसका अजीम अजर है। तो इताक के अंदर तो किसी को मालिक नहीं बनाया जाता, इताक में तो किसी को मालिक नहीं बनाया जाता, जकात में तो फकीर को मालिक बनाया जा रहा है, लेकिन इताक में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि गुलाम को उसका मालिक बनाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ आका उसके ऊपर से अपनी मिल्कियत को साकित कर रहा है। तो यहां गुलाम ने किसी चीज पर कब्जा ही नहीं किया, जब कब्जा ही नहीं किया तो आमिर की तरफ से वो नाइब भी नहीं बन सकता, कब्जा करे तो फिर ही नाइब बन सकता है कब्जे में, तो जब कब्जा ही नहीं है गुलाम की तरफ से किसी चीज में तो वो आमिर का नाइब भी ना हुआ, जब आमिर का नाइब ना हुआ तो आमिर की तरफ से कब्जा ना पाया गया, लिहाजा यहां हिबा ताम नहीं, जब हिबा ताम नहीं तो ये इताक आमिर की तरफ से नहीं हो सकता बल्कि ये मामूर यानी आका की तरफ से ही होगा। उसके बाद साहिब हिदाया ने गैर मुस्लिमों के निकाह के मसाइल बयान फरमाए और बतलाया कि अगर कोई काफिर बगैर गवाहों के निकाह कर लेता है, मसलन कोई जिम्मी जो है वो बगैर गवाहों के निकाह कर लेता है जिम्मिया के साथ, या एक जिम्मिया है वो अपनी इद्दत के अंदर जो है निकाह कर लेती है और ये उनके दीन में भी जायज है, ये शर्त जरूरी है, ये उनके दीन में भी जायज है, फिर उसके बाद ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं, तो इन्होंने जो निकाह किया था उसमें तो गवाह मौजूद नहीं थे, या वो निकाह तो इद्दत के अंदर किया था और बगैर गवाहों के या इद्दत के अंदर तो निकाह जायज नहीं, तो क्या अब जब ये मुसलमान हो गए हैं इनके उस निकाह को बरकरार रखा जाएगा या इनमें जुदाई करवाई जाएगी और इनको नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा? तो इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर इनके दरमियान तफरीक करवाई जाएगी और इनको नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो पहले निकाह किया था वो हराम था शरीयत इस्लामी की रूह से, क्योंकि बगैर गवाहों के भी निकाह नहीं हो सकता और इद्दत के अंदर भी निकाह नहीं हो सकता, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और इस शरीयत के अहकाम आम हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं और गैर मुस्लिमों के लिए भी हैं, क्योंकि ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत है भाई। अलबत्ता इस्लाम लाने से पहले या मुराफिया इलल हुकाम करने से पहले हम उनके मामलात में दखल नहीं देंगे, क्योंकि हमने उनसे अहदे जिम्मा किया हुआ है, हमने उनसे अहदे जिम्मा किया हुआ है, और मैंने बतलाया था मुराफा इलल हुकाम इसे कहते हैं कि वो काजी के पास एक मसला ले जाते हैं कि हमें इसमें इस्लामी हुक्म बताइए, हम उस पर अमल करना चाहते हैं, तो काजी के पास कोई मुकदमा वगैरह लेकर नहीं गए बल्कि इस्लामी हुक्म मालूम करने गए हैं कि हम उस पर अमल करना चाहते हैं। तो अब इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि हमने इनसे अहदे जिम्मा किया हुआ है, लिहाजा अगर इन्होंने बगैर गवाहों के निकाह किया या औरत की इद्दत के अंदर निकाह कर लिया तो हम इनके मामले में दखल नहीं देंगे, इस निकाह को इसी तरह चलने देंगे, अगरचे ये निकाह हराम है लेकिन हम इनके मामले में दखल नहीं देंगे, लेकिन जब ये खुद अब मुसलमान हो गए हैं, ये इन्होंने मुराफा कर लिया है तो अब हम दखल देंगे, अब काजी इनके दरमियान जुदाई करवा देगा कि ये निकाह तो जायज नहीं, तुम्हें नए सिरे से सही तरीके से दोबारा निकाह करना पड़ेगा। جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے انہوں نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہو چاہے عدت کے اندر نکاح کیا ہو دونوں صورتوں میں ان کو ان کے نکاح پر برقرار رکھا جائے گا. جبکہ صاحبین جو ہیں پہلے مسئلے کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ ہیں یعنی بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوا ہے صاحبین فرماتے ہیں اس کو برقرار رکھا جائے گا اسلام یا مرافعہ کی صورت میں. جبکہ دوسرے مسئلے میں یعنی عدت کے اندر جو نکاح ہے اس میں صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی ان میں جدائی کروائے گا اور پھر ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. صاحبین فرماتے ہیں کہ مسائل دو قسم کے ہیں, کچھ وہ مسائل ہیں جو اجماعی ہیں جن پر تمام فقہا کا اتفاق ہے بھائی, اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے. تو جو اتفاقی مسئلے ہیں وہ تو ان پر لاگو ہوں گے کیونکہ انہوں نے خود عہد ذمہ کر کے ان قوانین کا اپنے اوپر التزام کیا ہے, لیکن اختلافی مسائل ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں تو خود ہمارے فقہا اختلاف کرتے ہیں, کوئی ان کو مانتا ہے کوئی ان کو نہیں مانتا, ایک کی رائے ایک ہوتی ہے دوسرے کی رائے دوسری ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو بغیر گواہوں کے نکاح ہے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, عند الاحناف گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, جبکہ اور فقہا جو ہیں بعض وہ گواہوں کی شرط ہی نہیں لگاتے. جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ امام مالک رحمہ اللہ صرف اعلان کی شرط لگاتے ہیں نکاح میں, گواہوں کی شرط نہیں لگاتے. تو لہذا یہ جو گواہوں کے بغیر نکاح ہے اس کے اندر تو ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا, لیکن یہ جو عدت کے اندر نکاح ہے یہ تو بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے. لہذا جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مرافعہ نہیں کیا تھا ہم نے دخل نہیں دیا, جائز نہیں ہے لیکن ہم نے دخل نہیں دیا, لیکن اب جب یہ اسلام لے آئے ہیں یا مرافعہ انہوں نے کر لیا ہے تو اب ہم دخل دیں گے کہ یہ صورت تو کسی طرح بھی جائز نہیں تھی, کیسے تم نے یہ نکاح کر لیا, لہذا قاضی ان میں تفریق کروا دے گا اور ان کو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. جبکہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کرنا ہے یہ بھی حرام ہے, اور یہ جو عدت کے اندر نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے, لیکن نکاح کی اس حرمت کو ان ذمیوں کے حق میں ثابت نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کیونکہ یہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں, شریعت ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. تو جب یہ شریعت کے مخاطب نہیں تو شرعی احکام بھی ان پر لازم نہیں. کہتے ہیں جیسے دیکھو شراب اور خنزیر ہے, شراب اور خنزیر یہ مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہیں, اور اسی طرح ان کی بیع و شراء بھی حرام ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن ذمہ دار الاسلام میں رہنے کے باوجود شراب کا پینا اور خنزیر کا کھانا بھی ان کے لیے جائز, اور شراب اور خنزیر کی بیع و شراء بھی ان کے لیے جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا یہ شراب اور خنزیر کا کھانا پینا اور اسی طرح ان کی بیع و شراء جو ہے اس کی حرام ہونے کو ان پر لازم نہیں کیا جا سکتا, ان پر لازم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کیونکہ وہ شرعی احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں. تو بطور حق شریعت کے بھی ان پر اس نکاح کی حرمت کو لازم نہیں کیا جا سکتا, یہ جو نکاح ہے بغیر گواہوں کے اور یہ جو نکاح ہے عدت کے اندر یہ حرام ہے, لیکن اس نکاح کی حرمت کو ذمیوں پر لازم نہیں کیا جا سکتا شریعت کے حق کے طور پر بھی, کیونکہ شریعت کے یہ مخاطب نہیں ہیں. اور نیز یہ جو عدت ہے عدت کے اندر تو خاوند کا حق بھی ہوتا ہے, خاوند کا حق بھی ہوتا ہے کہ بیوی کو آگے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں خاوند سے یہ حاملہ تو نہیں, کہیں اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد تو نہیں. تو لہذا یہ جو عدت ہے اس میں خاوند کا بھی حق ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ جو عدت ہے اس کو ذمیہ پر شریعت کے حق کے طور پر بھی لازم قرار نہیں دیا جا سکتا, اور خاوند کے حق کے طور پر بھی اس پر عدت کو لازم نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تمہیں عدت گزارنا پڑے گی پھر ہی آگے نکاح کر سکتی ہو, نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. शरीयत के हक के तौर पर तो इसलिए लाजिम नहीं कर सकते कि यह शरीयत के मुखातब नहीं, और खावंद के हक के तौर पर इसलिए इस इद्दत को औरत पर लाजिम करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि खावंद का तो यह एतिकाद ही नहीं है। भाई कैद आई थी मतन में वजालिका फी दीन हिम जायज, उनके दीन में यह जायज हो, तो खावंद तो अपने दीन के मुताबिक इद्दत के अंदर निकाह को जायज समझता है, वो तो इद्दत को अपना हक समझता ही नहीं है। भाई तो जब खावन इद्दत को अपना हक नहीं समझता तो हम भी उस औरत पर इस इद्दत को लाजिम नहीं कर सकते, जबकि मुसलमान जो है वो तो इद्दत को लाजिम समझता है, लिहाजा मुसलमान खावन के हक में इद्दत को लाजिम किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं मालूम हुआ इनके हक में निकाह सही हो जाएगा, अगरचे गवाहों के बगैर निकाह हराम है, अगरचे इद्दत के अंदर निकाह हराम है, लेकिन इस निकाह का हराम होना इनके हक में साबित नहीं, लिहाजा इनका निकाह सही हो गया, इनका निकाह सही हो गया। अब बाद में अगर दोनों मुसलमान हुए हैं या इन्होंने मुराफा किया है तो फिर इस सूरत में यह बकाए इस्लाम की हालत है, और बगैर गवाहों के निकाह ये इब्तिदाए निकाह के तो मुनाफी है, बकाए निकाह के मुनाफी नहीं, इसलिए क्योंकि जब निकाह कर रहे हैं, जब अकद कर रहे हैं, निकाह का आगाज हो रहा है, निकाह की इब्तिदा हो रही है, उस वक्त तो गवाहों का होना जरूरी है, लेकिन एक दफा जब निकाह हो गया उसके बाद उन गवाहों का इंतकाल भी हो जाए, निकाह फिर भी बरकरार रहता है। मालूम हुआ इब्तिदाए निकाह के लिए तो गवाह जरूरी हैं, बकाए निकाह के लिए गवाह जरूरी नहीं। और इन्होंने ये जब इस्लाम लाए हैं या जब इन्होंने मुराफा किया है, ये तो बकाए इस्लाम की हालत है, इब्तिदा तो निकाह की वो कर चुके हैं पहले से ही अपने हालत कुफर के अंदर ही, तो ये बकाए निकाह की हालत है, और बकाए निकाह के अंदर तो गवाहों का वजूद जरूरी नहीं, लिहाजा इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा, निकाह को उसी तरह बाकी रखा जाएगा। और इसी तरह इद्दत है, इद्दत जो है वो भी इब्तिदाए निकाह के मुनाफी तो है, इद्दत हो तो उस दौरान निकाह जायज नहीं, लेकिन इस वक्त जब ये इस्लाम लाए हैं या इन्होंने मुराफा किया है तो ये तो बकाए निकाह की हालत है, अभी तो वो निकाह का आगाज नहीं कर रहे, निकाह का तो आगाज और इब्तिदा वो कर चुके हैं, ये तो बकाए निकाह की हालत है, तो बकाए निकाह की हालत इद्दत के मुनाफी नहीं है। भाई यानी इद्दत भी हो और निकाह भी बाकी हो, यह हो सकता है, इस पर इश्काल होता है कि यह कैसे हो सकता है, इद्दत तो हमेशा निकाह टूटने के बाद आती है जब खामन तलाक दे देता है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं बकाए निकाह भी हो और इद्दत भी हो दोनों में कोई मुनाफात नहीं है। तो मैंने बतलाया था कि सूरत मसला ये एक औरत है, उसका खावंद कई सालों से गुम है, उस औरत का ख्याल हुआ कि मर चुका होगा, चुनांचे उसने एक और शख्स से निकाह कर लिया कि मेरा खावंद मर चुका है, और उस शख्स ने इसके साथ सोहबत भी कर ली, और फिर बाद में उसका पहला खावंद वापस आ गया, तो भाई याद रखो ये पहले खावंद की बीवी है, इस दूसरे निकाह का कोई एतबार नहीं है, लेकिन उस दूसरे खावंद ने सोहबत तो की है, लिहाजा अब पहले खावंद के लिए सोहबत जायज नहीं जब तक ये औरत इद्दत न गुजार ले। तो अब देखो पहले खावंद का निकाह भी बाकी है और औरत इद्दत गुजार रही है, मालूम हुआ इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि बकाए निकाह के अंदर गवाहों का होना भी जरूरी नहीं, और नीज इसी तरह इद्दत जो है वो भी बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, और ये जो इस्लाम लाए हैं और या इन्होंने मुराफा किया है ये बकाए निकाह की हालत में किया है, लिहाजा इनको उसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि बकाए निकाह में न गवाह जरूरी और न इद्दत उसके मुनाफी है, तो उनको उसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं फईदा तज़व्वजल मजूसी उम्महु अबिबनतहु सुम्मा अस्लमा फुर्रिका बैनहुमा। सूरत मसला ये कि एक मजूसी है, उसने अपनी मां से या अपनी बेटी से निकाह कर लिया है जी। ये मसला उनके दीन में जायज है। मैंने बताया मजूसी कहते हैं आतिश परस्त जो आग की इबादत करते हैं, और आजकल इनको पारसी कहते हैं, पारसी। तो एक पारसी मजहब वाले ने अपनी मां या बेटी से निकाह कर लिया और यह उनके दीन में जायज था, यह उनके दीन में जायज था। फिर ये दोनों मुसलमान हो गए तो क्या अब इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा या इनमें जुदाई करवा दी जाएगी? तो बिल इत्तेफाक हमारे तमाम अइमा फरमाते हैं कि इनके दरमियान जुदाई करवाई जाएगी, इनके दरमियान जुदाई करवाई जाएगी। इसलिए क्योंकि ये जब मुसलमान हुए हैं तो ये बकाए निकाह की हालत है, इब्तिदाए निकाह की हालत नहीं। निकाह तो वो पहले से कर चुके हैं, तवज्जो है। तो ये कौन सी हालत में मुसलमान हुए? बकाए निकाह की हालत में। और महरम होना ये मुनाफिय निकाह है, महरम होना मुनाफिय निकाह है, महरम के साथ निकाह नहीं हो सकता। और ये महरमियत इब्तिदाए निकाह के भी मुनाफी है और बकाए निकाह के भी मुनाफी है। इब्तिदाए निकाह में महरमियत हो तब भी निकाह नहीं हो सकता, और अगर निकाह हो चुका है बाद में महरमियत आ जाए तब भी निकाह बाकी नहीं रह सकता। मसलन एक शख्स है, उसने एक सगीरा से निकाह कर लिया, सगीरा से उसके वली ने निकाह करवा दिया, और मसलन वो सगीरा भी 2 साल के अंदर अंदर उसकी उम्र है भाई, लेकिन वली ने उसका निकाह करवा दिया है। और फिर इस सगीरा ने किसी औरत का दूध पिया, बाद में पता चला कि इस औरत ने तो इस खावंद को भी दूध पिलाया था भाई, तो खावंद को भी दूध पिलाया हुआ था, अब बीवी को भी दूध पिला दिया, तो दोनों आपस में रिजाई भाई बहन बन गए भाई, महरमियत आ गई। और ये महरमियत कब आई? इब्तिदाई निकाह में या बकाए निकाह की हालत में? इब्तिदा में तो महरमियत नहीं थी, इब्तिदा में तो वो रिजाई भाई बहन नहीं थे, लेकिन बका के अंदर अब महरमियत आ गई तो इनमें अब जुदाई करवाई जाएगी भाई। ये मियां बीवी नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे के रिजाई भाई बहन हैं। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या हुआ कि महरमियत इब्तिदाए निकाह के भी मुनाफी है और बकाए निकाह के भी मुनाफी है, महरमियत के होते हुए निकाह बाकी नहीं रह सकता, लिहाजा यहां इनमें फिर जुदाई करवाई जाएगी। गुज़श्ता मसलों में आपने देखा भाई, गवाहों का ना होना वो इब्तिदाए निकाह के तो मुनाफी था लेकिन बकाए निकाह के मुनाफी नहीं था भाई, या इसी तरह इद्दत जो थी वो इब्तिदाए निकाह के मुनाफी तो थी लेकिन बकाए निकाह के वो मुनाफी नहीं थी। लेकिन यहां जो महरमियत है वो इब्तिदाए निकाह के भी मुनाफी और बकाए निकाह के भी मुनाफी है, तो लिहाजा अब जब ये दोनों मुसलमान हुए हैं तो बकाए निकाह की हालत है लेकिन महरमियत तो बकाए निकाह के भी मुनाफी है, तो अब इनमें जुदाई करवाई जाएगी जी। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं फईदा तज़व्वजल मजूसी यू उम्महू अभी बनातहू, और जब निकाह कर लिया किसी मजूसी ने अपनी मां से या अपनी बेटी से, सुम्मा असलमा फिर दोनों मुसलमान हो गए, फुर्रिका बैनहुमा तो इन दोनों के दरमियान जुदाई करवाई जाएगी। लिअन्ना निकाह अल महारिमी लहू हुक्मुल बुतलानी फीमा बैनहुम इंदहुमा, साहिबैन के नजदीक तो खुद मजूसियों के दरमियान भी निकाह महारिम जायज नहीं, खुद मजूसियों के दरमियान भी निकाह महारिम जायज नहीं, महरम के साथ निकाह की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि साहिबैन का वही जाब्ता है। क्या जाब्ता था? कि इत्तेफाकी मसला इन पर लाजिम होगा, इन्होंने अहदे जिम्मा करके हमारे इत्तेफाकी मसाइल का खुद अपने ऊपर इल्तिजाम कर लिया है, और महरम के साथ निकाह का हराम होना और बातिल होना यह तो इजमाई मसला है, सारी उम्मत का इस पर इजमा है भाई। जब यह इजमाई मसला है तो यह जिम्मियों के हक में भी उन पर क्या है, जिम्मियों ने खुद इसका अपने ऊपर इल्तिजाम किया है, लिहाजा ये इस तरह का निकाह करेंगे वो निकाह बातिल है। लेकिन जब तक इस्लाम नहीं लाए हम तआर्रुज नहीं करेंगे, हम इनके मामले में दखल नहीं देंगे, तो इनके अपने हक में भी ये निकाह बातिल था लेकिन सिर्फ जिम्मी होने की वजह से हम इनके मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे थे। अलबत्ता ये निकाह खुद उनके नजदीक भी बातिल ही था, लेकिन जब ये इस्लाम ले आए तो अब हम दखल देंगे और हम इनमें जुदाई करवा देंगे। तो कहते हैं लिअन्ना निकाह अल महारिमी, इसलिए क्योंकि महरमों का जो निकाह है, लहू हुक्मुल बुतलानी उसके लिए बातिल होने का हुक्म है, फीमा बैनहुम खुद मजूसियों के दरमियान भी, इंदहुमा साहिबैन के नजदीक, कमा जकरना फिल मुअतद्दती जैसे कि हमने मुअतद्दा के अंदर जिक्र कर दिया, साहिबैन ने क्या फरमाया था कि इद्दत के अंदर निकाह का हराम होना यह इत्तेफाकी मसला है, लिहाजा इद्दत के अंदर निकाह किया है और फिर दोनों मुसलमान हुए या इन्होंने मुराफा किया तो फिर उनमें जुदाई करवाएंगे। तो यहां पर भी अब जब निकाह महरम से किया है तो जुदाई करवाएंगे क्योंकि यह इत्तेफाकी मसला है। तो कहते हैं कमा जकर ना फिल मुअतद्दती, जैसे कि हमने मुअतद्दा में जिक्र किया, वह वजब तअर्रुज बिल इस्लामी फयुफर्रकु, और अब वाजिब हो गया अतअर्रुज। तअर्रुज का क्या माना, एक चीज के पीछे पड़ना, एक चीज में दखल देना। अब ये तो मुसलमान हो गए हैं तो अब हमारे लिए तअर्रुज लाजिम हो गया है, अब हम इनमें जुदाई करवाएंगे। तो कहते हैं वह वजब तअर्रुज बिल इस्लामी, और तअर्रुज जो है वाजिब हो गया है इस्लाम लाने की वजह से, फयुफर्रकु, तो इनमें जुदाई करवाई जाएगी। वईंदहु, और इमाम साहब के नजदीक, लहू हुक्मु सेहती फी सहीह, कि इस निकाह के लिए सेहत का हुक्म है, यानी ये निकाह सही है उनके दरमियान, ये निकाह उनके दरमियान सही है क्योंकि उनका यह अकीदा है कि महारिम से निकाह जायज है भाई, तो उनके साथ उनके अकीदे के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा, तो उनके अकीदे के मुताबिक तो निकाह सही है। लेकिन अब जब ये दोनों इस्लाम ले आए हैं तो अब ये बकाए निकाह की हालत है, लेकिन महरमियत जैसे इब्तिदाए निकाह के मुनाफी है, बकाए निकाह के भी मुनाफी है, इसलिए हम इनमें जुदाई करवाएंगे जी। तो फर्क क्या आया, इमाम साहब के नजदीक इस्लाम लाने से कबल खुद इनके दरमियान ये निकाह सही था इनके अकीदे के मुताबिक, जबकि साहिबैन के नजदीक इस्लाम लाने से पहले भी इनका ये निकाह बातिल था क्योंकि इत्तेफाकी मसला था। हां, हम सिर्फ दखल नहीं दे रहे थे आहदे जिम्मा की वजह से। तो कहते हैं वाइंदहू, और इमाम साहब के नजदीक, लहू हुक्म सेहती, कि इस निकाह के लिए सही होने का हुक्म है, यानी ये निकाह उनमें आपस में सही है, फिर सही कौल के मुताबिक, सही कौल के मुताबिक। दरअसल यहां फुकहा के दो ग्रोह हैं भाई, अहनाफ में फुकहा के दो ग्रोह हो गए। बाज फुकहा इस बात की तरफ गए कि इमाम साहब के नजदीक इस्लाम लाने से पहले भी इनका यह निकाह सहीह नहीं, जबकि बाज फुकहा इस तरफ गए कि इमाम साहब के नजदीक इस्लाम लाने से पहले इनका यह निकाह सही है क्योंकि वो अपने अकीदे के मुताबिक निकाह कर रहे हैं। तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि सही यही कौल है कि इमाम साहब के मुताबिक यह निकाह सही है, इस्लाम लाने से पहले खुद मजूसियों के दरमियान उनके अकीदे के मुताबिक मामला होगा और उनके नजदीक यह निकाह सही है। फर्क समझ में आ रहा है, एक सूरत यह है कि इस्लाम से पहले भी यह बातिल ही था लेकिन हम तअर्रुज नहीं कर रहे थे, और दूसरी सूरत यह है कि इस्लाम से पहले तो सही था क्योंकि इनका यही अकीदा था। तो फुकहा दोनों तरफ गए हैं, बास क्या फरमाते हैं कि इमाम साहब के नजदीक इस्लाम से पहले भी इनका यह निकाह बातिल था, और बास कहते हैं इस्लाम से पहले यह निकाह सही था, और यह कौल सही है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वईंदहू, और इमाम साहब के नजदीक, लहू हुक्म सेहती, कि इस निकाह के लिए सही होने का हुक्म है कि यह सही है, फिर सही कौल के मुताबिक। इल्ला अन्नल महरमियत तुनाफी बका अन निकाही, मगर यह कि महरम होना यह बकाए निकाह के मुनाफी है, फयुफर्रकु, तो अब जुदाई करवाई जाएगी, बिखिलाफिल इद्दती, बखिलाफ इद्दत के, लिअन्नहा ला तुनाफी ही, वो तो बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, निकाह भी बाकी हो और इद्दत भी आ जाए जैसे गुजश्ता सबक के अंदर मसला जिक्र हुआ था। तो इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं लेकिन महरमियत बकाए निकाह के मुनाफी है भाई। आगे देखिए, सुम्मा भी इस्लामी अहदिहिमा युफर्रकु बैनहुमा व बि मुराफाति अहदिहिमा ला युफर्रकु इंदहु खिलाफन लहुमा। सूरत मसला यह कि मजूसी ने अपनी मां या बेटी से निकाह कर लिया है, अब इन दोनों में से एक मुसलमान हो जाता है या दोनों में से एक मुराफा करता है, आकर काजी से पूछता है कि इस मामले में मुझे इस्लामी हुक्म बताइए, मैं उस पर अमल करना चाहता हूं। तवज्जो है, पहली सूरत थी दोनों मुसलमान हुए थे तो फिर उस सूरत में जुदाई करवाई जाएगी जैसे कि मतन में आ गया था, और अब दूसरी सूरत है कि दोनों में से एक मुसलमान होता है या दोनों में से एक मुराफा करता है, تو پھر یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا تو پھر بھی قاضی جدائی کروائے گا, دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا پھر بھی قاضی جدائی کروائے گا, لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا ہے پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جیسے ایک کے اسلام لانے کی صورت میں قاضی بالاتفاق جدائی کرواتا ہے تو ایک کے مرافعے کی صورت میں بھی قاضی جدائی کروائے گا, اس لیے کیونکہ جب دونوں میں سے ایک آ گیا کہ مجھے اسلامی حکم بتائیں میں اسلامی حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو معلوم ہو وہ اسلام کے سامنے جھک گیا اس مسئلے میں, یعنی یہ اس مسلمان ہونے والے کی طرح ہو گیا. کس کی طرح ہو گیا؟ مسلمان ہونے والے کی طرح ہو گیا. اور ایک کے اسلام کی صورت میں تو قاضی تفریق کرواتا تھا تو یہ ایک کا مرافعہ بھی کس کی طرح ہوا؟ اس کے اسلام کی طرح ہو گیا, لہذا اب بھی قاضی دونوں میں جدائی کروائے گا. معلوم ہوا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو یا دونوں میں سے ایک مرافعہ کرے, دونوں کا ایک ہی حکم ہے صاحبین کے نزدیک. جبکہ امام صاحب دونوں میں فرق کرتے ہیں, دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے پھر تو قاضی جدائی کروائے گا, لیکن دونوں میں سے اگر ایک مرافعہ کرتا ہے پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا. توجہ ہے, صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے, قاضی جدائی کروائے گا چاہے ایک مسلمان ہوا ہو چاہے ایک نے مرافعہ کیا ہو. جبکہ امام صاحب کے نزدیک دونوں میں فرق ہے, ایک اسلام لے آئے پھر تو قاضی جدائی کروائے گا, ایک مرافعہ کرے تو پھر قاضی جدائی نہیں کروائے گا. تو کہتے ہیں ثم باسلامی احدہما یفرق بینہما, پھر دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام کی وجہ سے ان میں جدائی کروائی جائے گی, وبمرافعتی احدہما لا یفرق عندہ, اور دونوں میں سے کسی ایک کے مرافعے کی وجہ سے جدائی نہیں کروائی جائے گی عندہ امام صاحب کے نزدیک خلاف اللہما بخلاف صاحبین کے, وہ فرماتے ہیں ایک کے مرافعے کی صورت میں بھی جدائی کروائی جائے گی. تو معلوم ہوا صاحبین کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں, ایک اسلام لے آئے یا ایک مرافعہ کر لے دونوں کا حکم ایک ہی ہے, لیکن امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا ہے, ایک اسلام لائے تو جدائی کروائیں گے اور ایک مرافعہ کرے تو جدائی نہیں کروائیں گے, تو یہ امام صاحب نے دونوں میں فرق کیوں کیا ہے, اب اس فرق کی وجہ بتلائیں گے. کہتے ہیں والفرق, اور فرق یہ ہے امام صاحب کے نزدیک کہ ان استحقاق احدہما لا یبطل بمرافعۃ صاحبہ, استحقاق کا معنی ہے حقدار ہونا, لأن استحقاق احدہما, اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ایک کا حقدار ہونا, لا یبطل بمرافعت صاحبہ, یہ باطل نہیں ہوتا اس کے ساتھی کے مرافعہ کرنے سے, اذ لا یتغیر به اعتقاده, اس لیے کیونکہ اس مرافعہ کی وجہ سے اس کا اعتقاد نہیں بدلا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا ہے لیکن دوسرے نے تو مرافعہ نہیں کیا, تو اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا یہ نکاح جائز ہے. اس نے تو مرافعہ نہیں کیا, اس نے تو اسلامی حکم معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کیا, تو اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا نکاح صحیح ہے, اس کے عقیدے کے مطابق وہ اس نکاح کا حقدار ہے, وہ اس نکاح کا حقدار ہے. اور جبکہ دوسرے نے مرافعہ کر لیا کہ مجھے اسلامی حکم بتائیں میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں, تو دوسرے کا اعتقاد اس کے مخالف ہوا. ایک کا اعتقاد ہے کہ وہ اس نکاح کا حقدار ہے, دوسرے کا اعتقاد کیا کہ وہ اس نکاح کا حقدار نہیں ہے, تو لہذا کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ ایک کا اعتقاد دوسرے کے اعتقاد کے معارض ہو گیا, مقابل ہو گیا. تو لہذا دونوں کے اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے, لہذا صرف ایک کے مرافعے سے قاضی تفریق نہیں کروائے گا, کیونکہ ایک کا اعتقاد اگرچہ بدل گیا لیکن دوسرے کا اعتقاد اس کے مقابلے میں موجود ہے, لہذا کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے. تو نکاح جیسے پہلے صحیح تھا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق, وہ اب بھی صحیح رہے گا. صرف ایک کے مرافعے کی وجہ سے دوسرے کا استحقاق باطل نہیں ہو سکتا, لہذا نکاح اسی طرح اپنی حالت پر رہے گا. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا ہے، وہ اسلامی حکم کے سامنے جھک رہا ہے کہ مجھے حکم بتایا جائے، میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں، تو اس سے گویا ایک کا اعتقاد تو بدل رہا ہے لیکن دوسرے کا اعتقاد تو نہیں بدلا، تو صرف ایک کے اعتقاد کے بدلنے سے دوسرے کا استحقاق باطل نہیں ہوتا۔ یہ جو ان کا نکاح تھا، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جیسے پہلے صحیح تھا، وہ اب بھی اسی طرح رہے گا، کسی ایک کی وجہ سے اس کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں والفرق، اور امام صاحب کے نزدیک فرق یہ ہے کہ ان استحقاق احدہما لا یبطل بمرافعت صاحبہ، کہ ان دونوں میں سے ایک کا حقدار ہونا یہ باطل نہیں ہوتا دوسرے ساتھی کے مرافعہ کر لینے سے، اس لا یتغیر به اعتقادہ، اس لیے کیونکہ اس ساتھی کے مرافعے کی وجہ سے اس کا اعتقاد نہیں بدلا۔ تو دونوں اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہو گئے، ہم ایک کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا نکاح اسی طرح صحیح رہے گا۔ بھائی اما اعتقاد المصر بالکفر لا يعارض اسلام المسلم، دوسری صورت بھائی کہ اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو پھر قاضی ان میں تفریق کروا دیتا ہے، تو اشکال ہوتا ہے یہاں بھی تو دونوں کے اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہیں، ایک اسلام والے کا اعتقاد ہے کہ ہم اس نکاح کے حقدار نہیں، یہ ہمارا حق نہیں، یہ جائز نہیں ہے یہ نکاح، اور دوسرے کا کیا اعتقاد ہے کہ یہ نکاح تو جائز ہے کیونکہ وہ تو ابھی بھی مجوسی ہے، بھائی توجہ ہے، تو لہذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی تو اعتقاد ایک دوسرے کے معارض ہو رہے تھے، وہاں پھر کیسے آپ نے دونوں میں جدائی کا حکم دے دیا؟ وہاں بھی نکاح اسی طرح صحیح رہنا چاہیے تھا، کیونکہ کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے، ایک کا اعتقاد دوسرے کے اعتقاد کے معارض ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں، لہذا جب ایک مسلمان ہو گیا ہے تو دوسرے کا اعتقاد اس کے معارض اور مقابل نہیں ہو سکتا، اسلام کو ترجیح دی جائے گی بھائی، لہذا اس لیے اب دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفر، مصر بھائی اصر یسر اصرار کا معنی ہے، ایک چیز پر اصرار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، تو اصر یسر سے مصر اس میں فاعل ہے، یہ را مشدد ہے بھائی۔ کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفر، باقی اعتقاد اس شخص کا جو کفر پر اصرار کر رہا ہے، یعنی جو کفر پر جمع ہوا ہے، ایک تو مسلمان ہو گیا دوسرا کفر پر جمع ہوا ہے، وہ جو کفر پر جمع ہوا ہے اس کا اعتقاد لا يعارض اسلام المسلمی، یہ مسلمان کے اسلام کے مقابل نہیں ہو سکتا، مسلمان کے اعتقاد کے یہ مقابل نہیں ہو سکتا، لأن الاسلام يعلو ولا يعلا، اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اسلام ہر چیز پر غالب ہوتا ہے، ولا يعلا، اور اسلام مغلوب نہیں ہوتا، تو یہاں اسلام کو غالب قرار دیا جائے گا۔ بھائی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں اما اعتقاد المصر بالکفر، باقی اعتقاد اس شخص کا جو کفر پر اصرار کر رہا ہے، جو کفر پر جمع ہوا ہے، لا يعارض اسلام المسلمی، یہ مسلمان کے اسلام کے مقابل نہیں ہو سکتا، لأن الاسلام يعلو ولا يعلا، اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، ولا يعلا، اور مغلوب نہیں ہوتا، ولو ترافعا يفرق بالاجماع لان مرافعتهما كتحكيمهما، بھئی اگر دونوں نے مرافعہ کیا ہے، ایک مجوسی نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کیا اور دونوں نے اب مرافعہ کر لیا کہ ہمیں اسلامی حکم بتائیے، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اب جب انہوں نے خود مرافعہ کر لیا، اب ہم دخل دیں گے، اب ہم دخل دیں گے، تو بالاتفاق اب ان میں جدائی کروا دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں ولو ترافع، اور اگر دونوں نے مرافعہ کیا، یفرق بالاجماع، تو بالاتفاق ان میں جدائی کروائی جائے گی، لان مرافعتهما كتحكيمهما، اس لیے کیونکہ ان دونوں کا مرافعہ ان دونوں کے حکم بنانے کی طرح ہے، تحکیم بھائی حق کا ما یحکم تحکیم کا معنی ہے، کسی شخص کو حکم بنانا، کسی شخص کو فیصلہ کرنے والا بنانا کسی معاملے کے اندر، جیسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے تو کسی کو حکم اور ثالث بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ ثالث جو بھی فیصلہ کرے دونوں فریق اس کو قبول کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ اس کو قبول کرے اور اس کے خلاف ہے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، ایسا نہیں. جب دونوں نے مل کر ایک آدمی کو اپنا فیصل بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا قرار دے دیا ہے، تو اب دونوں پر لازم ہے ان کو اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. لہذا بات چل رہی تھی اگر دونوں مرافعہ کریں تو پھر اس صورت میں بال اتفاق ان میں جدائی کروائی جائے گی. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دونوں کا مرافعہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے دونوں کسی کو اپنا ثالث بنا دیں، کسی کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں. مثلا ابھی تو انہوں نے مرافعہ کیا ہے، قاضی کے پاس آئے ہیں، اس کے بجائے اگر یہ کسی اور آدمی کے پاس جاتے، یہ مجوسی جس نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کیا ہوا ہے، یہ دونوں اگر کسی اور آدمی کے پاس جاتے اور اس کو ثالث بناتے، حکم بناتے کہ آپ ہمیں اسلامی حکم بتائیے اور اس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، تو اس صورت کے اندر دیکھو جب ثالث بنایا جائے تو اس کے فیصلے پر عمل لازم ہو جاتا ہے، تو وہ جو حکم ہوگا وہ ان کے درمیان جدائی کروائے گا، اس پر لازم ہے. کیونکہ دونوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اسلام کے حکم کے مطابق، تو اس حکم پر کیا لازم ہے کہ ان دونوں میں جدائی کروا دے. تو جیسے جیسے یہ دونوں حکم بنائے کسی کو اور اس حکم کا فیصلہ ان دونوں پر لازم ہو جاتا ہے، اب ان دونوں کو جدائی اختیار کرنا پڑے گی ایک دوسرے سے بھائی، تو قاضی کا مقام تو حکم اور ثالث سے اعلی ہوتا ہے. وہ جو حکم تھا اس کو تو صرف ان دو پہ ولایت تھی، اس کا فیصلہ تو صرف ان دو پہ نافذ ہونا تھا، اور قاضی کو تو ولایت عامہ ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو سب پر نافذ ہوتا ہے. تو قاضی کا مقام حکم سے اعلی ہوا، تو جب حکم کی صورت میں فیصلہ ان پر لازم تھا اور جدائی کروانا ان میں لازم تھی، تو یہ ان کا مرافعہ بھی کس کی طرح ہے؟ تحکیم کی طرح ہے، اور تحکیم کے اندر تو ان پر حکم کا فیصلہ لازم تھا، تو یہاں پر بھی ان پر قاضی کا فیصلہ لازم ہوگا، قاضی ان میں جدائی کروا دے گا. یہ معنی ہے لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا، اس لیے کیونکہ ان دونوں کا مرافعت کرنا، کا تحکیمہما، یہ اسی طرح ہے جیسے دونوں کا حکم بنانا. آگے دیکھیے وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَمُرْتَدَّةً. جی مرتد کے نکاح کا مسئلہ آیا، العیاذ باللہ. مرتد جو ہے، مرتد وہ شخص جس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، تو یہ جو مرتد ہے اگر یہ مرد ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. البتہ مستحب یہ ہے کہ قاضی اس کو 3 دن کی مہلت دے دے تاکہ یہ غور و فکر کر لے، اور اس کے اگر اسلام پر کوئی اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کے جوابات اس کو دیے جائیں. تو 3 دن کی مہلت دے گا قاضی، اور وہ مہلت بھی کس لیے ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے. اور یہ مہلت دینا بطور استحباب کے ہے، یہ مستحب ہے، کوئی لازم نہیں. کوئی مرتد ہوتا ہے اس کو فوراً بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرے کتاب میں بین السطور حدیث دی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من غیر دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے تو اس کو قتل کر دو. تو اب یہ جو مرتد ہے کیا اس کو نکاح کی اجازت ہے، یہ نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں، مرتد کو نکاح کی اجازت نہیں، یہ تو قتل کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو تو قتل کیا جائے گا بھائی. تو یہ جو مہلت بھی اس کو دی گئی ہے 3 دن کی، یہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے، لہذا اس میں یہ نکاح نہیں کر سکتا بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ، اور جائز نہیں ہے کہ مرتد نکاح کرے مسلمتن، کسی مسلمان عورت سے، وَلَا كَافِرَتَن، اور نہ کسی کافرہ عورت سے، وَمُرْتَدَّتَن، اور نہ کسی مرتدہ عورت سے، کسی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْقَتْلِ، اس لیے کیونکہ یہ مرتد جو ہے یہ تو قتل کا مستحق ہے بھائی. والامحال ضرورت التامل، اور یہ جو اس کو مہلت دی گئی ہے، ضرورت التامل، یہ غور و فکر کی ضرورت ہے بھائی، یہ غور و فکر کے لیے ضروری ہے. یہ جو مہلت دی گئی ہے یہ کس لیے دی گئی ہے؟ غور و فکر کی ضرورت کی وجہ سے، غور و فکر کے لیے کچھ وقت چاہیے اس کو، لہذا اس کو 3 دن کی مہلت استحباب کے طریقے پر قاضی دے سکتا ہے. तो कहते हैं वल इम्हालू, और इसको मोहलत देना, जरूरतु तामुली, वो गौर फिक्र की जरूरत है, यानी गौर फिक्र के लिए जरूरी है, इसलिए ये मोहलत इसको दी जाएगी। वन निकाह युशगिलुहु अनहु, और निकाह तो इस शख्स को मशगूल कर देगा, अनहु उस गौर फिक्र से, निकाह कर लेगा फिर तो ये गौर फिक्र कैसे करेगा, तो ये मुद्दत तो हमने गौर फिक्र के लिए उसको दी है, लिहाजा निकाह नहीं कर सकता। तो कहते हैं वन निकाह युशगिलुहु अनहु, और उसका ये निकाह जो है इसको मशगूल कर देगा उस गौर फिक्र से, यानी वो गौर फिक्र नहीं कर सकेगा। फला युशरऊ फी हक़िही, लिहाजा ये निकाह इस मुर्तद के हक में मशरू नहीं होगा, यानी इसको निकाह की इजाजत नहीं होगी इसको। तो कहते हैं फला युशरऊ फी हक़िही, लिहाजा ये निकाह इसके हक में मशरू नहीं होगा, यानी जायज नहीं होगा। वकदल मुर्तदतुला तजब वजुहा मुस्लिमों वला काफिरुन, अब मुर्तदा का हुक्म आया, याद रखो अगर औरत मुर्तदा हुई है तो फिर इस सूरत में औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता इस औरत को जेल में डाला जाएगा, और फिर इसको जेल ही में रखेंगे यहां तक कि या तो ये दोबारा मुसलमान हो जाए या इसी जेल में ही इसको मौत आ जाए। बच्ची व कदल मुर्तदा, तो और इसी तरह मुर्तदा जो है ला यतज़व्वजुहा मुस्लिमुन वला काफिरुन, न तो इसके साथ कोई मुसलमान निकाह कर सकता है और ना कोई काफिर। लिअन्नहा महबूसतुन लित्तअम्मुली, इसलिए क्योंकि इसको कैद किया गया है लित्तअम्मुली, गौर व फिक्र करने के लिए। इस मुर्तदा को क्यों जेल में डाला गया है, ताकि गौर व फिक्र करके फिर दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो कहते हैं लिअन्नहा महबूसतुन लित्तअम्मुली, इसलिए क्योंकि इसको कैद किया गया है गौर व फिक्र के लिए। वखिदमतु ज़ौजी तुशगिलुहा अनहु, और खावन की खिदमत वो तो इसको मशगूल कर देगी इस अनहु इस गौर व फिक्र से, अगर निकाह की इजाजत होगी फिर तो यह खावन की खिदमत में मशगूल हो जाएगी, इसको तो फिर गौर व फिक्र का वक्त नहीं मिलेगा, लिहाजा इसको निकाह की इजाजत नहीं होगी। भाई वली अन्नहू, दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं, वली अन्नहू ला यंतजिमु बैनहुमल मसालिहु, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो निकाह है ये शामिल नहीं होगा इनके दरमियान मसलहतों को। भाई याद रखो, ये जो निकाह किया जाता है, ये जो शरीयत ने निकाह की इजाजत दी है, ये सिर्फ निकाह की अपनी जात की वजह से इजाजत नहीं दी, बल्कि इसके अंदर निकाह की जो मसलहतें हैं वो मकसूद होती हैं, कि ये मियां बीवी एक नया घर आबाद कर रहे हैं, घर का निजाम चलाएंगे, इससे इनका सिलसिला नस्ल आगे चलेगा, औलाद पैदा होगी, फिर औलाद की तरबियत करेंगे, तो ये निकाह के अंदर ये सारी मसलहतें मकसूद होती हैं। तो निकाह किस लिए किया जाता है, इन मसलहतों के लिए। और यहां पर मुर्तदा है, मुर्तदा को तो हम जेल में डालेंगे, उसके बारे में तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि इसको जेल में रखना है, तो जब ये जेल में है तो अगर ये निकाह कर भी ले तो निकाह के तो मकासिद और मसलहतें हासिल नहीं, तवज्जो है, तो जब ये जेल में है तो निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती, और जब निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती तो इसके लिए निकाह जायज भी नहीं होगा, क्योंकि निकाह तो जायज ही किस लिए है, खुद वैसे अपनी जात के एतबार से निकाह को शरीयत ने जायज करार नहीं दिया, बल्कि इसकी मसलहतों के एतबार से इसे जायज करार दिया है। कहते हैं वली अन्नहु ला यंतजिमु बैनहुमल मसालिहु, इसलिए क्योंकि ये जो निकाह है ये इन दोनों के दरमियान मसलहतों को शामिल नहीं, यानी इस सूरत में मसलहतों का इंतजाम नहीं हो सकेगा, क्योंकि बीवी तो कैद के अंदर होगी। भाई तो कहते हैं वन निकाह माशुरिया ले आईनी ही, और निकाह जो है वो अपनी जात के एतबार से मशरू नहीं है, बल्ले मसालिही ही, बल्कि अपनी मसलहतों के एतबार से मशरू है, मशरू है यानी शरीयत ने इसको जायज करार दिया है, निकाह की जात के एतबार से इसको जायज करार नहीं दिया, बल्कि किस लिए जायज करार दिया है, इसकी मसलहतों के एतबार से, और जब बीवी कैद में है तो निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती, लिहाजा इसके लिए निकाह भी मशरू नहीं होगा यानी जायज नहीं होगा। तो यह माना है वन निकाह माशुरिया ले आईनी ही, और निकाह जो है वह अपनी जात के एतबार से मशरू नहीं है, बल्ले मसालिही, बल्कि अपनी मसलहतों के लिए मशरू है। फइन कान अहदु ज़ौजैनी मुस्लिमन फलवलदु अला दीनिही, याद रखो औलाद जो है, औलाद वो मियां बीवी में से जिसका दीन आला हो वो उसके ताबिया होती है। मियां बीवी में से अगर एक मुसलमान है तो औलाद को भी मुसलमान शुमार किया जाएगा। मसलन एक मुसलमान है, उसने ईसाई या यहूदिया औरत से निकाह किया है, तो दोनों में से किसका दीन आला, मुसलमान का दीन आला, लिहाजा बच्चे को मुसलमान शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं फइन काना अहदु ज़ौजैनि मुस्लिमन, अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान है, फल वलदु अला दीनिही, तो औलाद जो है वो उसके दीन पर होगी, क्योंकि इस्लाम आला दीन है सबसे। वकदालिक इन असलम अहदुहुमा, इसी तरह है सूरत मसला, मसलन मियां बीवी जिम्मी है, गैर मुस्लिम है, लेकिन फिर इन दोनों में से एक मुसलमान हो गया तो, और इनका एक छोटा नाबालिग बच्चा भी है, तो याद रखो वो बच्चा भी अब मुसलमान शुमार होगा, क्योंकि दोनों में से जब एक मुसलमान हो गया है तो बच्चा अपने वालिदैन में से जिसका दीन आला होता है उसके ताबिया होता है, तो इस बच्चे को भी मुसलमान शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं वकदालिक इन असलम अहदुहुमा, और इसी तरह अगर इन दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया, वलहू वलदुन सगीरुन, और उसका कोई छोटा बच्चा था यानी नाबालिग बच्चा था, सारा वलदुहु मुस्लिमम भी इस्लामी ही, तो उसकी ये औलाद जो है ये मुसलमान हो जाएगी उस मियां बीवी में से एक के इस्लाम लाने से, यानी इसको भी मुसलमान शुमार करेंगे। लिअन नफी जालिही तब अन लहू नजरन लहू, कहते हैं इसलिए, लिअन नफी जालिही तब अन लहू, इसलिए क्योंकि इस औलाद को उस मुसलमान के ताबिया करार देने में नजरन लहू, इस बच्चे पर शफकत है, क्योंकि जब बच्चे को मुसलमान करार देंगे तो उसमें उसके लिए शफकत है भाई, और इस्लाम से बढ़कर कौन सी शफकत होगी भाई, लिहाजा बच्चे को मां बाप में से जो मुसलमान है उसके ताबिया करार दिया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न फी जालिही तबअन लहू, इसलिए क्योंकि बच्चे को उस मुसलमान के ताबिया करार देने में नज़रन लहू, उस पर शफकत है। वलव कान अहदुहुमा किताबियन वल आखरु मजूसियन फल वलदु किताबियन, सूरत मसला यह कि मां बाप दोनों गैर मुस्लिम हैं, अलबत्ता दोनों में से एक अहले किताब में से है यानी आसमानी दीन को मानता है और किसी किताब पर ईमान रखता है, और जबकि दूसरा मजूसी है या मुशरिक है, तो फिर इस सूरत में याद रखो अहनाफ का वही जाब्ता है कि मां बाप में से जिसका दीन आला हो बच्चा उसके दीन पर होता है, और जाहिर सी बात है कि अहले किताब का दीन आला है मजूसी और मुशरिक के मुकाबले में, इसलिए क्योंकि कम से कम वो आसमानी दीन को तो मानते हैं, कम से कम आसमानी किताब को तो मानते हैं, लिहाजा बच्चे को अहले किताब में से शुमार किया जाएगा, बच्चे को अहले किताब में से शुमार किया जाएगा इंद अल अहनाफ भाई। तो कहते हैं वलव कान अहदुहुमा किताबियन वल आखरु मजूसियन, और अगर मियां बीवी में से कोई एक किताबी है और दूसरा मजूसी है, फल वलदु किताबियन, तो बच्चा जो है वो किताबी होगा। लिअन्न फीही नौअन नज़रिन लहू, इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी बच्चे पर एक किस्म की शफकत है, कामिल शफकत तो नहीं हो सकती क्योंकि मुसलमान तो दोनों में से एक भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ शफकत हो गई, तवज्जो है भाई, किस तरह कुछ शफकत हो गई। कहते हैं इजिल मजूसी यतु शर्रुम मिन्हु, इसलिए क्योंकि ये जो मजूसी मजहब है शर्रुम मिन्हु, ये किताबी के मुकाबले में बदतर है भाई, किताबी का मजहब इसके मुकाबले में बेहतर है कि कम से कम वो आसमानी दीन को तो मानते हैं, किसी किताब को तो मानते हैं। तो कहते हैं लिअन्न फीही नौअ नज़रिन लहू, कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें भी एक किस्म की शफकत है बच्चे के लिए। इज़िल मजूसी यतु शर्रुम मिन्हु, इसलिए क्योंकि मजूसी होना बदतर है मिन्हु किताबी होने के मुकाबले में। व शाफ़ई रहमहुल्लाहु तआला युखालिफुना फीही लित्तआरुज़ी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह इसमें हमारी मुखालिफत करते हैं तआरुज़ की वजह से। हमने क्या कहा कि मां बाप में से अगर कोई किताबी है तो बच्चे को भी किताबी शुमार किया जाएगा, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी मुखालफत करते हैं। वो फरमाते हैं कि देखो, चाहे आप इस बच्चे को किताबी शुमार करें चाहे मजूसी शुमार करें, है तो ये काफिर ही, और हदीस में आता है अलकुफ्र मिल्लतुं वाहिदा, मिल्लत का क्या माना दीन, अलकुफ्र मिल्लतुं वाहिदा, कुफर सारा का सारा एक ही दीन है, तो आप चाहे किताबी शुमार करें चाहे मजूसी शुमार करें, है तो ये काफिर ही। और फिर इनमें गौर करें, अगर आप इस बच्चे को किताबी शुमार करेंगे तो किताबी के साथ तो निकाह भी जायज होता है और किताबी का जबीहा भी हलाल होता है, और अगर आप इस बच्चे को मजूसी शुमार करेंगे तो मजूसियों के साथ तो निकाह भी जायज नहीं है और उनका जबीहा भी हलाल नहीं है। तो यहां पर एक जानिब देखें तो हिल्लत आ रही है और दूसरी तरफ देखें तो हुरमत आ रही है। और फिका का जाब्ता है कि जब दो ऐसी दलीलें जमा हो जाएं कि एक से हिल्लत साबित हो रही हो दूसरे से हुरमत साबित हो रही हो तो जानिब हुरमत को तरजीह होती है। याद रखो ये फुकाहा का जाबता है भाई कि अगर एक मसले के अंदर एक चीज की दो दलीलें जमा हो जाएं, एक दलील से पता चल रहा है ये हलाल है दूसरी दलील से पता चल रहा है ये हराम है तो फिर जानिब हुरमत को तरजीह होगी। तवज्जो है, वजह यह कि इसमें एहतियात ज्यादा है, एहतियात ज्यादा है। किस तरह एहतियात ज्यादा है? मसलन देखो एक चीज है उसके बारे में दोनों किस्म की दलीलें हैं, एक दलील से क्या पता चला यह हलाल है तो अगर हम इस जानिब हलाल होने को तरजीह दे दें लेकिन हमें तो हकीकत का पता नहीं, हो सकता है हकीकत में इंदल्लाह यह चीज हराम हो, हमने तो दलील को देखकर क्या कहा यह हलाल है और हो सकता है हकीकत में वो क्या हो हराम हो, तो इस सूरत में देखो एक हराम चीज का इस्तेमाल लाजिम आएगा। और अगर हम हुरमत वाली दलील को तरजीह दे दें और उस चीज को हराम करार दे दें तो हो सकता है वो चीज इंदल्लाह हलाल हो तो भी इसमें कोई खराबी लाजिम नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये हुआ एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए। इंदल्लाह तो चीज हलाल थी लेकिन हमने उसको दलील की वजह से क्या करार दे दिया हराम, तो ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए हैं और तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर हम इसको हलाल करार देते और इंदल्लाह ये हराम होती तो फिर इस सूरत में तो एक हराम चीज का इस्तेमाल लाजिम आता। तो लिहाजा जब हिल्लत और हुरमत दोनों की दलीलें जमा हो जाएं तो फिर किस पर अमल किया जाता है? हुरमत वाली दलील पर, क्योंकि उसमें एहतियात है कि ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक जाएंगे भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं कि चाहे आप इसको किताबी शुमार करें चाहे मजूसी शुमार करें दोनों सूरतों के अंदर है तो कुफर ही, अलबत्ता एक सूरत के अंदर हिल्लत आ रही है निकाह भी हलाल जबीहा भी हलाल और दूसरी सूरत के अंदर हुरमत आ रही है कि निकाह भी हराम और जबीहा भी हराम है, तो एहतियात इसमें है कि जानिब हुरमत को तरजीह दी जाए और इसको मजूसी करार दिया जाए, इस बच्चे को मजूसी, क्योंकि फुकाहा का जाब्ता है कि जब मुबीह और मुहरिम, मुबीह यानी मुबाह करने वाली जायज करने वाली और मुहरिम यानी हराम करने वाली जब दो दलीलें जमा हो जाएं, एक मुबीह हो और एक मुहरिम हो तो किस दलील को तरजीह होती है? मुहरिम दलील को तरजीह होती है। तो कहते हैं والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह इसके अंदर हमारी मुखालफत करते हैं للتعارض, تعارض की वजह से कि दोनों दलीलों में تعارض आ रहा है, एक दलील से हुरमत साबित हो रही है तो दूसरी दलील से हिल्लत साबित हो रही है भाई, तो लिहाजा वो हुरमत वाली जानिब को तरजीह देते हैं और कहते हैं कि ये इसको मजूसी शुमार करेंगे। वनहनु असबत न तरजीहा, और हमने तरजीह को साबित कर दिया, हमने तरजीह को साबित कर दिया, पीछे हमने बताया था लि अन्ना फीही नौअ नज़रिन लहू इदिल मजूसी यतु शर्रुम मिन्हू, मजूसी किताबी के मुकाबले में बदतर है, तो हमने तरजीह साबित कर दी कि जो बेहतर है उसके मजहब पर बच्चे को शुमार करेंगे ना कि उसके मजहब पर जो बदतर है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वह इदा असलमतिल मरअतु वज़ौजुहा काफिरुन अरज़ल काज़ी अलैहिल इस्लाम फइन असलम फहिया मरअतु, भाई सूरत मसला यह कि मियां बीवी दोनों में से कोई एक मुसलमान हो गया, मियां बीवी दोनों में से एक मुसलमान हो गया तो फिर अब क्या किया जाएगा, और यह मसला अगर दारुल इस्लाम में पेश आए तो फिर क्या करेंगे, और यही मसला अगर दारुल कुफर में पेश आया यानी दारुल हर्ब में फिर क्या करेंगे। तो अब पहले दारुल इस्लाम की सूरत आपको बतलाएंगे कि अगर दारुल इस्लाम के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हुआ तो फिर इस सूरत के अंदर काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा और फिर जब वो इस्लाम से इनकार कर देगा तो फिर उसकी वजह से काजी इनमें जुदाई करवा देगा। तवज्जो है, दारुल इस्लाम के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया तो अब जुदाई कैसे आएगी? काजी उनके दरमियान जुदाई करवाएगा। तवज्जो है। और दारुल हर्ब के अंदर जुदाई कैसी आएगी वो आगे चल के साहिब हिदाया बतलाएंगे कि वहां पर तीन हैज औरत जब गुजार लेगी तो उनमें जुदाई आ जाएगी। तवज्जो है। पहले ये दारुल इस्लाम वाली सूरत है वो देख लें जिसमें काजी जुदाई करवाएगा। तो कहते हैं वह इदा असलमतिल मरअत वज़ौजुहा काफिरुन, जब औरत मुसलमान हो गई और इसका खावंद काफिर है, अरज़ल काजी अलैहिल इस्लाम, तो काजी उस पर इस्लाम को पेश करेगा। औरत मुसलमान हुई है तो उसके खावंद पर काजी इस्लाम पेश करेगा कि मुसलमान होना चाहते हो तो मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा निकाह बरकरार रहेगा वरना हम तुम्हारे दरमियान जुदाई करवा देंगे। फइन अस्लमा फहिया मरअतुहु, अगर वो मुसलमान हो गया तो ये उसकी बीवी है, यानी निकाह उसी तरह कायम रहेगा। वइन अबा, और अगर वो इस्लाम से इनकार करता है, अबा या अबा का क्या माना है, इनकार करना। वइन अबा, और अगर वो इनकार करता है, फर्रका बैनहुमा, तो काजी उन दोनों के दरमियान जुदाई करवा देगा। वकान ज़ालिका तलाकन इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और तरफेन के नजदीक ये जुदाई तलाक शुमार होगी, उनके नजदीक यह तलाक है। वजह यह कि खावंद ने इनकार किया है, इस्लाम लाने से खावंद ने इनकार किया है तो उसकी वजह से जुदाई आई है, तो खावंद इस जुदाई का सबब बना, और खावंद तो तलाक देने का अहल है, लिहाजा खावंद की तरफ से जो जुदाई आएगी वह तलाक के हुक्म में है। तवज्जो है। जुदाई तो किसने करवाई, काजी ने, लेकिन किसके इनकार की वजह से करवाई, खावंद के इनकार की वजह से, तो खावंद की तरफ से यह जुदाई आई है लिहाजा यह तलाक के हुक्म में है। तो काजी ने जुदाई करवा दी, और यह जुदाई किसके हुक्म में, तलाक के हुक्म में। बाद में कुछ अरसे के बाद वो खावंद भी मुसलमान हो गया और वो फिर इस औरत से निकाह करता है, तो याद रखो अब वो दो तलाकों का मालिक है, क्योंकि वो एक काजी ने जो जुदाई करवाई थी वो भी तलाक थी, वो गुजर चुकी है, दो तलाकें रह गई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन अबा फर्रका बैनहुमा, और अगर खावंद इस्लाम से इनकार करता है तो काजी इन दोनों के दरमियान जुदाई करवा देगा। वकान अजालिका तलाकन इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये जुदाई जो है ये तलाक होगी तरफेन के नजदीक। वह इन असलम अज़्ज़ौज व तहतहु मजूसियतुन, और अगर खावंद मुसलमान हुआ, व तहतहु मजूसियतुन, और उसके तहत जो है मजूसिया औरत है, मजूसिया कहा किताबिया नहीं, क्योंकि किताबिया के साथ तो मुसलमान वैसे भी निकाह कर सकता है, तो अगर खावंद मुसलमान हो जाए और बीवी किताबिया है फिर निकाह उसी तरह रहेगा भाई, इसीलिए कहा कि बीवी क्या हो, मजूसिया हो। तो कहते हैं वही इन असलम अज़्ज़ौजु, और अगर खावंद मुसलमान हुआ, व तहतहु मजूसियतुन, और उसके तहत मजूसिया औरत थी, उरिज़ा अलैहल इस्लाम, तो उस औरत पर इस्लाम पेश किया जाएगा। फइन असलमत फहिया मरअतुहु, अगर वो औरत मुसलमान हो गई तो ये औरत उसकी बीवी है, यानी निकाह बरकरार रहेगा। व इन अबत, और अगर औरत ने इनकार कर दिया इस्लाम से, फर्रकल काजी बैनहुमा, तो काजी इन दोनों के दरमियान जुदाई कर देगा। वलम तकुन अल-फुरकतु बैनहुमा तलाकन, और ये जो जुदाई है इन दोनों के दरमियान ये तलाक नहीं होगी, ये तलाक शुमार नहीं होगी, क्योंकि इनकार किसने किया है, औरत ने, इस्लाम से इनकार औरत ने किया है, तो जुदाई औरत की तरफ से आई है और औरत तो तलाक देने की अहल नहीं है, लिहाजा इसको फस्खे निकाह शुमार करेंगे कि काजी ने दोनों में निकाह को क्या कर दिया है, फसख कर दिया है, चुनाचे काजी ने निकाह फसख कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद वह औरत भी मुसलमान हो गई और फिर उसने इसी शख्स से निकाह कर लिया, तो अब भी खावंद तीन तलाकों का मालिक है, क्योंकि पहले कोई तलाक नहीं गुजरी, फस्खे निकाह हुआ था, जबकि पिछले मसले में वो काजी की तफरीक जब खावंद ने इनकार किया था वो तलाक के दर्जे में था, वहां बाद में अगर खावंद मुसलमान हो गया और ये मियां बीवी ने फिर आपस में निकाह कर लिया तो फिर वहां खावंद तमाम जिंदगी सिर्फ दो तलाकों का मालिक रहेगा। फर्क समझ में आ गया। तो कहते हैं वलम तकुनिल फुरकतु बैनहुमा तलाकन, और इस सूरत के अंदर ये जो जुदाई है दोनों में ये तलाक नहीं शुमार होगी। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं, ला यकूनुल फुरकतु तलाकन फिल वजहैन, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं दोनों सूरतों में फस्खे निकाह शुमार होगा, तलाक शुमार नहीं, चाहे खावंद इनकार करे चाहे बीवी इनकार करे, दोनों सूरतों में ये जो काजी जुदाई करवाएगा ये फस्खे निकाह है, तलाक नहीं। लिहाजा बाद में अगर दूसरा मुसलमान होता है और फिर ये आपस में निकाह करते हैं तो खावंद उसी तरह तीन तलाकों का मालिक होगा। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं ला यकून उल फुरकतु तलाकन, के फुरकत जो है ये जुदाई जो है ये तलाक नहीं है, फिल वजहैनी दोनों सूरतों में, यानी ये जुदाई खावन के इनकार की वजह से आई हो चाहे बीवी के इनकार की वजह से, दोनों सूरतों में ये तलाक नहीं है बल्कि फस्खे निकाह है। अमल अर्जु फमजहबुना वकाल शाफियो रहमहुल्ला ला युअरज़ुल इस्लाम। भाई हमने बताया कि मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए दारुल इस्लाम के अंदर तो काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा कि मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारा निकाह बाकी रहेगा वरना मैं जुदाई करवा दूंगा। यह अहनाफ का मजहब है, हमारे नजदीक काजी इस्लाम पेश करेगा दूसरे पर, जबकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं नहीं, दूसरे पर इस्लाम को पेश नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जिम्मी हैं और जिम्मियों के साथ हमने अहदे जिम्मा किया हुआ है कि हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देंगे। तो अगर आप उस जिम्मी पर इस्लाम पेश करते हैं ये तो आप उसके मामले में दखल दे रहे हैं, हालांकि हमें उनके मामले में दखल देने से मना किया गया है। तो हम जवाब देते हैं कि दखल देना जबर के तरीके पर उससे हमें मना किया गया है, लेकिन नरमी के साथ अगर उसको इख्तियार दिया जाए कि तुम्हारी मर्जी है, इस्लाम लाना चाहते हो तो निकाह बाकी रहेगा, नहीं लाना चाहते तो हम जुदाई करवा देंगे, तो नरमी के साथ तो उसको इख्तियार दिया जा सकता है भाई। तो कहते हैं अमल अर्जु फमजहबुना, तो ये जो इस्लाम को पेश करना है दूसरे पर फमजहबुना, ये हमारा मजहब है यानी अहनाफ का मजहब है। वकाल शाफियो रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं ला युअरज़ुल इस्लामु, कि इस्लाम पेश नहीं किया जाएगा लिअन्न फीही तअर्रुज़न लहुम, क्योंकि इसके अंदर इनके साथ तअर्रुज़ करना है। अगर इस्लाम आप पेश करेंगे ये तो आप क्या कर रहे हैं, तअर्रुज़ कर रहे हैं, उनकी मामले में दखल दे रहे हैं। वक़द ज़मीन्ना बिअक़्द ज़िम्मती, और तहकीक हम ज़ामिन हुए हैं अक़्द ज़िम्मा की वजह से अन ला नतअर्रज़ लहुम, कि हम उनके साथ तअर्रुज़ नहीं करेंगे। हमने अक़्द ज़िम्मा की वजह से इनको जमानत दी थी कि हम तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, तुम अपने दीन और मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हो दारुल इस्लाम में। तो कहते हैं वक़्त जमीन ना, और तहकीक हमने इनको जमानत दी थी भी अक़्दे जिम्मती, अक़्दे जिम्मा की वजह से कि अन ला नतअर्रज़ लहुम, कि हम इनके साथ तअर्रुज़ नहीं करेंगे, इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इल्ला अन्न मिलकन निकाही, हां इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं इन पर इस्लाम पेश नहीं किया जाएगा। तो फिर इनमें जुदाई कैसे आएगी, हमारे नजदीक तो काजी इस्लाम पेश करेगा और फिर जुदाई करवा देगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि ये जो मिलके निकाह है, मिलके निकाह ये सोहबत के जरिए पक्की हो जाती है, और जब तक सोहबत नहीं की मिलके निकाह पक्की नहीं। चुनांचे इसीलिए अगर खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी और अभी उससे सोहबत नहीं की थी तो तलाक होते ही बीवी उससे बाइना हो गई, जुदा हो गई, वो अगले ही दिन कहीं और निकाह करना चाहे कर सकती है, उस पर कोई इद्दत नहीं है। याद रखना अगर खावंद सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे दे तो बीवी पर इद्दत नहीं है। इद्दत तो औरत पर इसलिए वाजिब होती थी ताकि पता चल जाए कि ये कहीं हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में खावंद का हमल तो नहीं है, तो इसलिए वहां इद्दत गुजारना पड़ती थी। लेकिन यहां तो सोहबत ही नहीं हुई, रुखसती ही नहीं हुई, उससे पहले ही खावंद ने तलाक दे दी है, तो इस सूरत में औरत पर इद्दत नहीं होती। तलाक देते ही फौरन निकाह बिल्कुल टूट गया और फौरन ही औरत दूसरी जगह निकाह कर सकती है। लेकिन अगर खावंद सोहबत कर चुका है और फिर तलाक देता है तो फिर इस सूरत में औरत पर इद्दत वाजिब है ताकि पता चल जाए कहीं यह औरत हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में खावंद का बच्चा तो नहीं, लिहाजा फिर उस सूरत में उसको तीन हैज गुजारने पड़ते हैं तो फिर जुदाई आ जाती है, फिर निकाह पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है। تو صحبہ سے پہلے طلاق دی جائے تو فوراً ہی جدائی آ جاتی ہے، عورت جہاں مرضی نکاح کر لے، اور صحبت کے بعد خاوند طلاق دے تو عدت کے بعد پھر عورت کو آگے نکاح کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے نکاح کی اجازت نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ابھی خاوند نے چونکہ صحبت نہیں کی تھی لہذا نکاح پکا نہیں تھا، طلاق دیتے ہی نکاح بالکل ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، جبکہ اگر خاوند صحبت کر لے پھر نکاح پکا ہو گیا، اب خاوند طلاق دے گا تو عورت فوراً آگے نکاح نہیں کر سکتی، اس کو عدت گزارنا پڑے گی، فوراً نکاح پوری طرح نہیں ٹوٹے گا بلکہ عدت کے بعد جا کر ٹوٹے گا۔ معلوم ہوا عقد نکاح بغیر صحبت کے ہو تو وہ ابھی پکا نہیں، اور جب صحبت ہو جائے تو وہ پکا ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آگئی۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے اور ابھی صحبت نہیں کی، جب صحبت نہیں کی تو نکاح پکا نہیں، جب نکاح پکا نہیں تو اس ایک کے مسلمان ہوتے ہی خود بخود جدائی آ جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، قاضی کو کوئی اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں، صحبت نہیں کی تو ایک کے مسلمان ہوتے ہی فوراً نکاح ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر خاوند صحبت کر چکا ہے اب تو نکاح پکا ہو چکا ہے، لہذا اس صورت میں اسلام لاتے ہی فوراً جدائی نہیں آئے گی بلکہ 3 حیض گزارنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد ہی دونوں کے اندر جدائی آئے گی۔ اور اگر 3 حیض کے اندر دوسرا فریق مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا نکاح برقرار رہے گا، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں الا ان ملک نکاح قبل الدخول غیر متأکد، مگر یہ کہ ملک نکاح جو ہے وہ صحبت کرنے سے پہلے غیر متأکد، وہ پکا نہیں ہے، وہ پختہ نہیں ہے، فینقطع بنفس الاسلامی، لہذا نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ ملک نکاح ٹوٹ جائے گی، بنفس الاسلامی، نفس اسلام سے ہی، مسلمان ہونے سے ہی یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، وبعدہ متأکد، اور صحبت کے بعد تو نکاح پکا ہو جاتا ہے، فیتعجل الی انقضاء ثلاث حیض، تو لہذا یہ نکاح کا ٹوٹنا مؤخر ہو جائے گا، الی انقضاء ثلاث حیض، 3 حیضوں کے گزرنے تک۔ پھر نکاح پکا ہو چکا ہے جب خاوند صحبت کر چکا ہے اور اس کے بعد دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے، تو اب یہ نکاح پکا ہو چکا ہے، تو لہذا صرف اسلام لانے سے یہ ابھی نہیں ٹوٹا، بلکہ جب 3 حیض عورت گزار لے گی تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ مانا ہے۔ وبعدہ متأکد، اور صحبت کے بعد نکاح پکا ہو جاتا ہے، فیتعجل الی انقضاء ثلاث حیض، لہذا اس جدائی کا واقع ہونا یہ مؤخر ہو جائے گا 3 حیضوں کے گزرنے تک، کما فی طلاقی، جیسے کس کے اندر تھا، طلاق کے اندر تھا، کہ طلاق کے اندر بھی اگر صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو اسی وقت نکاح ٹوٹ گیا، عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے فوراً نکاح کر سکتی ہے، جبکہ اگر صحبت کے بعد طلاق دی ہے تو پھر عدت کے بعد جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، یہ تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل۔ بھائی ان کا کیا مذہب ہے کہ اسلام پیش نہیں کریں گے، اور اگر صحبت نہیں کی تو اسلام لاتے ہی نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، دونوں میں سے ایک کے اسلام لاتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اگر صحبت کر چکا ہے پھر عورت 3 حیض گزارے گی پھر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں دیکھو عبارت پہ نظر رکھو، فَيَتَعَجَّلُ إِلَى انْقِضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، کہ پھر وہ نکاح کا ٹوٹنا مؤخر ہو جائے گا 3 حیضوں کے گزرنے تک۔ یہاں شارحین نے اعتراض کیا ہے صاحب ہدایہ پر، کہ یہاں صاحب ہدایہ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کی عدت حیض کے ساتھ نہیں شمار کرتے بلکہ طہر کے ساتھ شمار کرتے ہیں، تو صاحب ہدایہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ 3 طہروں کے پورا ہونے تک نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن صاحب ہدایہ غلطی سے کیا فرما گئے، 3 حیضوں تک نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں شارحین نے صاحب ہدایہ کی نسبت کی ہے غلطی کی طرف، لیکن یہ بات درست نہیں ہے بھائی، صاحب ہدایہ جیسا عظیم فقیہ بھائی ان سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ثالثہ رابعہ کے طالب علم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت کا شمار طہروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، حیض کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو صاحب ہدایہ جو اتنے مشکل اور پیچیدہ مسئلے जिक्र फरमाते चले जा रहे हैं और इतनी फसीह और बलीग इबारत के साथ कि इंसान पढ़कर लुत्फ से झूम उठता है। तो इतना अजीम फकी, उससे यह छोटी सी बच्चों वाली गलती कैसे हो सकती है? तो जवाब देते हैं फिर बाद शारहीन कि नहीं, यहां साहिब हिदाया से गलती नहीं हुई, साहिब हिदाया बतौर इल्जाम के अहनाफ को कह रहे कि ए अहनाफ, सोहबत से पहले निकाह पक्का नहीं तो फिर एक जैसे ही मुसलमान होगा उसी वक्त निकाह टूट जाएगा, लेकिन अगर खावन सोहबत कर चुका है तो फिर तुम्हारे नजदीक इद्दत हैज से शुमार होती है, तो कब औरत को जुदा होना चाहिए? तीन हैजों के बाद जुदा होना चाहिए, उससे पहले आपको जुदाई का हुकाम नहीं लगाना चाहिए और न काजी को इस्लाम पेश करना चाहिए, वरना तो आप उनके मामलात में मुदाखलत करेंगे। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदाया यहां पर इन्होंने जो सलाह से हियस तीन हैजों को जिक्र फरमाया, ये गोया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अहनाफ को बतौर इल्जाम के कह रहे हैं कि इस तरह जुदाई आनी चाहिए। आप लोगों के नजदीक तो इद्दत किससे है? हैज से है, तो तीन हैजों के बाद जुदाई आनी चाहिए। भाई बात समझ में आ गई? आगे देखिए, वलाना, और हमारी दलील यह है कि अनल मकासिद कद फातत फला बुद्ध मिन सबबी यबतनी अलैहिल फुरकतु वल इस्लाम ताअतुन ला यस्लुहु सबबन लहा फयुअरजुल इस्लाम लियहसुल अल मकासिद बिल इस्लाम औ यस्बुतल फुरकतु बिल इबा। हमारी दलील यह है, हमने क्या कहा था कि दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो काजी जुदाई करवाएगा। हम कहते हैं कि निकाह जो है वो अपनी जात के एतबार से मशरू नहीं है बल्कि अपने मकासिद के एतबार से मशरू है, और जब दोनों में से एक मुसलमान हो गया तो अब निकाह के मकासिद यहां हासिल ना हो सकेंगे, निकाह के मकासिद फौत हो गए। जब दोनों में से एक मुसलमान हो गया तो अब निकाह के मकासिद क्या हो गए? फौत हो गए। अब ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो लिहाजा अब दोनों में जुदाई आएगी। लेकिन जुदाई का सबब किसे करार दिया जाए? इन दोनों में से एक मुसलमान हुआ है लेकिन इस्लाम को जुदाई का सबब करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि इस्लाम तो जोड़ पैदा करने वाला है, इस्लाम तो तोड़ पैदा नहीं करता। भाई इस्लाम तो हमें हर हाल में ताल्लुक कायम रखने का हुक्म देता है, लिहाजा यहां इस्लाम को जुदाई का सबब करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जरूरी है कि काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करे, फिर अगर वो इनकार करता है तो ये इनकार अनिल इस्लाम, ये तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहा है, नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह के दीन को कबूल नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये इनकार अनिल इस्लाम, इसको जुदाई का सबब करार दिया जा सकता है। और इनकार अनिल इस्लाम कब आएगा? जब काजी उस पर इस्लाम पेश करेगा, उसके बाद ही इनकार हो सकता है। तो फिर अगर वो कबूल कर लेता है फिर तो निकाह को बरकरार रखेंगे, लेकिन अगर वो इनकार कर देता है तो अब उसका इनकार सबब बनेगा जुदाई का, तो अब काजी दोनों में जुदाई करवा देगा। तो इसलिए हमने कहा काजी का इस्लाम पेश करना जरूरी है भाई, ताकि वो इनकार कर सके और फिर जुदाई आ सके। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अनल मकासिद कद फातत, के निकाह के जो मकासिद हैं वो तहकीक फौत हो गए, क्योंकि दोनों में से एक मुसलमान हो गया, अब निकाह के मकासिद हासिल नहीं हो सकते, फला बुद्ध मिन सबबिन, लिहाजा जरूरी है एक ऐसा सबब या बतनी अलैहिल फुरकतु, जिसके ऊपर जुदाई की बुनियाद हो। बात समझ में? कोई सबब चाहिए जिसके ऊपर जुदाई की बुनियाद हो। वल इस्लाम ताअतुन, और इस्लाम ये तो अल्लाह की इताअत है, ला यस्लुहु सबबन लहा, ये जुदाई का सबब नहीं हो सकता, ये सलाहियत नहीं रखता कि क्या बन जाए, जुदाई का सबब बन जाए। तो कहते हैं वल इस्लाम ताअतुन, और इस्लाम तो इताअत है, ला यस्लुहु सबबन लहा, वो इस जुदाई का सबब बनने की सलाहियत नहीं रखता, फयुअरजुल इस्लाम, तो लिहाजा इस्लाम को पेश किया जाएगा यानी दूसरे पर, लियहसुल अल मकासिद बिल इस्लामी, ताकि मकासिद हासिल हो जाए इस्लाम के जरिए, अगर वो भी मुसलमान हो जाता है तो अब निकाह के मकासिद हासिल हो सकेंगे, लिहाजा निकाह को बरकरार रखा जाएगा, और अगर वो इनकार करता है फिर जुदाई करवा दी जाएगी। ये माना है फयुअरजुल इस्लाम, तो इस्लाम को पेश किया जाएगा, लियहसुल अल मकासिद बिल इस्लामी, ताकि निकाह के मकासिद हासिल हो सकें इस्लाम की वजह से, कि वो इस्लाम ले आए। او یثبت الفرقۃ بالایبائی، یا تاکہ جدائی ثابت ہو سکے بالایبائی اس کے انکار کی وجہ سے. وجہ قول ابی یوسف رحمہ اللہ. تو دیکھو ہمارے نزدیک اسلام قاضی پیش کرے گا اور پھر وہ انکار کر دے گا تو پھر قاضی ان میں جدائی کروا دے گا. اور پھر آپ نے پڑھا کہ اگر انکار خاوند نے کیا ہے تو پھر قاضی کی یہ جدائی جو ہے یہ طلاق کے حکم میں ہے، اور اگر انکار عورت نے کیا ہے تو پھر قاضی کی یہ جدائی فسخ نکاح کے حکم میں ہے، یہ طلاق شمار نہیں. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس جدائی کو فسخ شمار کریں گے، چاہے عورت کے انکار کی وجہ سے جدائی آئے چاہے خاوند کے انکار کی وجہ سے جدائی آئے، دونوں صورتوں میں اس کو فسخ شمار کریں گے. وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں یہاں جو جدائی کروائی گئی اس میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہے، صرف ایک کا دخل نہیں ہے بلکہ دونوں کا دخل ہے، کہ دونوں میں اختلاف دین آ گیا، ایک کا دین اسلام ہے ایک کا غیر اسلام ہے، تو یہ اختلاف دین جو ہے سبب بن رہا ہے جدائی کا. معلوم ہوا میاں بیوی دونوں کا دخل ہے، دونوں اس جدائی میں شریک ہیں، مرد کی طرف سے صرف جدائی نہیں آ رہی یا صرف عورت کی طرف سے جدائی نہیں آ رہی بلکہ یہ اختلاف دین میں دونوں میاں بیوی شریک ہیں، اور جو جدائی دونوں کی طرف سے آئے اس کو طلاق قرار نہیں دے سکتے، طلاق تو اس کو قرار دیں گے جو خاوند کی طرف سے آئے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے، تو جیسے ہی مالک بنتا ہے ساتھ ہی نکاح فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی دونوں کا دخل ہے اس جدائی کے اندر، کہ دونوں میں سے ایک مالک بن رہا ہے اور دوسرا مملوک بن رہا ہے. بھائی تو یہ میاں بیوی ہیں اور ایک مالک بن رہا ہے ایک مملوک بن رہا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کو مل کے رقبی حاصل ہو رہی ہے، تو اس میں بھی دونوں کا دخل ہے. تو جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا مالک بنتا ہے تو وہاں جدائی آ جاتی ہے، اور اس جدائی میں دونوں کا دخل ہے کہ ان میں سے ایک کیا بنا ہے مالک اور دوسرا کیا بنا ہے مملوک، تو دونوں کا دخل آ گیا، اور وہ جدائی جس میں دونوں کا دخل ہو اس کو فسخ قرار دیتے ہیں، صرف خاوند کی طرف سے جدائی آئے تو اس کو طلاق قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں تو دونوں کا دخل ہے جدائی میں. وجہ قول ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الفرقۃ بسبب یشترک فیہ الزوجان، کہ یہ جدائی جو ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے آئی ہے جس میں میاں بیوی دونوں شریک ہیں، یعنی دونوں میں جو اختلاف دین آیا ہے اس میں دونوں شریک ہیں. فلا یکون طلاقا، تو یہ طلاق نہیں ہوگی. کل فرقۃ بسبب الملکی، جیسے کہ وہ جدائی ملکیت کے سبب سے آئے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو وہاں جو جدائی آتی ہے اس کو فسخ قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں جو جدائی آئی ہے اس میں دونوں شریک ہیں لہذا اس کو بھی فسخ قرار دیا جائے گا. ولہما، اب طرفین کی دلیل آ گئی کہ وہ فرماتے ہیں ان بالایباء امتنع عن الامساک بالمعروف مع قدرته علیہ بالاسلام فینوب القاضی منابہ فی التصریح. طرفین فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، کہ رجعی طلاقیں دو ہیں، فامساکم بمعروف او تصریحم باحسان، پھر اس کے بعد خاوند کے لیے یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روکنا ہے کہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے، او تصریحم باحسان، یا اس کو نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ رخصت کر دے. تو یہاں تصریح سے کیا مراد ہے؟ طلاق مراد ہے، یعنی رجعی طلاقیں دو ہی ہیں، اس کے بعد خاوند چاہے تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے، یعنی اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکے گا. اب یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک کر رکھے، او تصریحم باحسان، یا اس کو تیسری طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دے. تو دیکھو یہاں پر خاوند کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک کر رکھے یا تصریح بالاحسان کر دے، یعنی اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے یعنی طلاق دے دے. تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور خاوند جو ہے اس پر قاضی اسلام پیش کر رہا ہے، تو خاوند جو ہے وہ مسلمان ہو کر امساک بالمعروف پر عمل کر سکتا ہے، अगर वह मुसलमान हो जाता है तो आप बीवी भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, तो ये फिर इसी निकाह पर बरकरार रहेंगे और यूं कहेंगे खावन ने इमसाक बिल मारूफ पर अमल कर लिया, बीवी को अच्छे तरीके से रोक लिया। तो तरफैन फरमाते हैं जब बीवी मुसलमान हुई है तो काजी जो है खावन पर इस्लाम को पेश करेगा और खावन इस बात पर कादिर है, वो इस्लाम लाकर इमसाक बिल मारूफ पर अमल कर सकता है। लेकिन जब खावन ने इस्लाम से इनकार कर दिया तो उसने इमसाक बिल मारूफ को तर्क कर दिया, और जब इमसाक बिल मारूफ को तर्क कर दिया तो अब दूसरी सूरत यही है कि तसरीह बिल एहसान पर अमल किया जाए, तो काजी उसका नाइब बनकर तसरीह बिल एहसान पर अमल कर देगा। और तसरीह बिल एहसान तो किस चीज का नाम था? तलाक का। तो लिहाजा इसलिए यहां पर काजी तसरीह बिल एहसान में खावंद का नाइब बन गया, तो यह जुदाई जो आई यह तलाक के हुक्म में है। ये काजी ने खावंद का नायब बनकर तसरीह बिल एहसान करवा दिया, और तसरीह बिल एहसान तो किसका नाम था? तलाक का। तो ये इनकार खावंद की तरफ से आया, तो खावंद इस जुदाई का सबब बन रहा है, लिहाजा ये जुदाई तलाक के हुक्म में है। वलहुमा, और तरफैन की दलील यह है कि अन्नबिल इबा के इस्लाम से इनकार करने की वजह से इम्तना अनिल इमसाक बिल मारूफ मा कुदरती ही अलैहि बिल इस्लाम के इनकार की वजह से खामंद रुक गया है अनिल इमसाक बिल मारूफ इमसाक बिल मारूफ से मा कुदरती ही अलैहि, बावजूद के खामंद इस इमसाक बिल मारूफ पर कादिर था बिल इस्लामी इस्लाम के जरिए कि वो इस्लाम ले आता तो इमसाक बिल मारूफ हो जाता, तो उसने उसको तर्क कर दिया। फयनूबुल काजी मना बहू, तो काजी इस खावन का कायम मकाम हो जाएगा फिर तसरीह, तसरीह बिल एहसान में, कमाफिल जब भी वल उन्नति, जैसे के मजबूब होने और इन्नीन होने में है। जब बुन भाई, जब बुन कहते हैं मजबूब होना, यह लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका है। मजबूब कहते हैं वो मर्द जिसका आला तनासुल कट गया हो, उसको मजबूब कहते हैं। और उन्नह, उन्नह का माना है इन्नीन होना, यानी वो शख्स जो औरत के साथ सोहबत पर कादिर नहीं है। तो जैसे मजबूब और इन्नीन के मसले में काजी जो है मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा देता है। मसलन एक औरत ने एक शख्स से निकाह किया, पता चला वो तो मजबूब है, उसका आला तनासुल तो कटा हुआ है, तो फिर इस सूरत के अंदर औरत काजी के पास मुकदमा कर सकती है और काजी फिर दोनों में जुदाई करवा देगा। तो यहां पर भी देखो, खावन चूंकि मजबूब है इमसाक बिल मारूफ नहीं कर सकता, तो तसरीह बिल एहसान में काजी उसका नाइब बनकर जुदाई करवा देगा और यह जुदाई तलाक के हुक्म में होगी। और इसी तरह इन्नीन है, एक शख्स है वो बीवी के साथ सोहबत पर कादिर नहीं है, तो बीवी काजी के पास मुकदमा कर सकती है और काजी फिर इस इन्नीन को एक साल की मोहलत देगा कि एक साल में अगर अपना इलाज करवा सकते हो तो इलाज करवा लो। तो अगर एक साल के अंदर उसने अपना इलाज करवा लिया और वो बीवी के साथ सोहबत पर कादिर हो गया तो फिर तो काजी उस निकाह को उसी तरह बरकरार रखेगा, वरना वहां पर भी काजी उन दोनों में जुदाई करवा देगा और ये जुदाई तलाक के हुक्म में है। यानी खावन इमसाक बिल मारूफ न कर सका तो तसरीह बिल एहसान में काजी उसका नाइब बनकर जुदाई करवा देगा। तो फर्क सिर्फ इतना है, मजबूब के मामले में काजी फौरन उसी वक्त जुदाई करवा देगा, इसलिए क्योंकि वहां उस मर्द के ठीक होने की कोई सूरत नहीं, जबकि इन्नीन के अंदर काजी एक साल की मोहलत देगा, फिर उसके बाद भी अगर वो कादिर ना हो सका सोहबत पर फिर काजी जुदाई करवा देगा। और ये जो जुदाई करवाएगा काजी, मैंने बताया ये किसके हुक्म में है? तलाक के हुक्म में है बिल इत्तेफाक भाई। तो तरफैन फरमाते हैं जैसे मजबूब और इन्नीन के मसले में काजी जुदाई करवाता था तो वो तलाक के हुक्म में होती थी, तो यहां पर भी जब खावंद इस्लाम से इनकार कर रहा है तो जुदाई का सबब खावंद बन रहा है, लिहाजा ये भी तलाक के हुक्म में होगी। ये माना है कमाफिल जब भी वल उन्नति, जैसे कि मजबूब होने और इन्नीन होने में है। अम मलमर अतु फलैसत भी अहल तलाक, बाकी औरत जो है वो तो तलाक की अहल नहीं है, उसे तो तलाक देने का इख्तियार नहीं है। फला यनूबू मना बहा इंदा इबा इहा, लिहाजा काजी जो है उस औरत का कायम मकाम नहीं हो सकता तसरीह में इंदा इबा इहा, औरत के इनकार करते वक्त। भाई देखो, अगर इनकार औरत ने किया है तो जुदाई का सबब औरत बन रही है, जुदाई का सबब औरत बन रही है, लेकिन यहां पर काजी तसरीह बिल एहसान में औरत का नाइब नहीं बन सकता, क्योंकि औरत को तो तसरीह बिल एहसान का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि तसरीह से क्या मुराद है, तलाक देना, औरत को तो तलाक का इख्तियार नहीं। जब औरत को खुद तलाक का इख्तियार नहीं है, वो तसरीह बिल एहसान नहीं कर सकती, तो काजी उसका नाइब कैसे बन सकता है तसरीह बिल एहसान में। बात समझ में आ गई। लिहाजा अगर औरत ने इनकार किया है और काजी फिर जुदाई करवाता है तो यह तसरीह बिल एहसान नहीं है, क्योंकि औरत खुद तसरीह बिल एहसान की अहल नहीं, तो काजी भी तसरीह बिल एहसान में उसका नायब नहीं बन सकता। तो फिर इसको फस्ख निकाह शुमार करेंगे। यह माना है अम्मल मर अतुफलसत भी अहनिल तलाक, बाकी औरत जो है वह तलाक की अहल नहीं है, फला या नूबू मना बहा, लिहाजा काजी उस औरत के कायम मकाम नहीं हो सकता। आइंद इबा इहा, उस औरत के इनकार के वक्त काजी उसका कायम मकाम नहीं हो सकता, क्योंकि खुद औरत को तसरीह बिल एहसान का इख्तियार नहीं, तो काजी उसका नायब कैसे बन सकता है इसमें भाई। तो ये फस्ख निकाह शुमार होगा जब औरत इनकार करे। सुम्म इदा फर्रकल काजी बैनहुमा, जी अब सूरत याद रखो भाई, आप पढ़ चुके हैं कि सोहबत करने की वजह से महर पक्का हो जाता है। खावंद अगर बीवी से सोहबत कर ले तो महर पक्का हो गया, अब पूरा महर देना पड़ेगा, चाहे जुदाई का सबब औरत ही क्यों ना बने। लेकिन अगर सोहबत खावन ने नहीं की और उससे पहले खावन तलाक दे तो फिर निस्फ महर देना पड़ता है। तवज्जो है। लिहाजा यहां पर अगर इनकार खावन ने किया है तो जुदाई आ गई, और ये जुदाई किसके हुक्म में है, तलाक के हुक्म में है, और ये तलाक या तो सोहबत के बाद होगी या सोहबत से पहले। अगर सोहबत के बाद है फिर तो पूरा ही महर देना पड़ेगा खावन को, क्योंकि सोहबत से महर पक्का हो चुका है। और अगर ये जुदाई सोहबत से पहले आई है, तवज्जो है, और किसकी तरफ से आई, किसने इनकार किया है, खावंद ने, तो यह जुदाई तलाक के हुक्म में है, तो तलाक कबला सोहबत आ रही है और इस सूरत में निस्फ महर आता है, तो अब भी यहां खावंद को निस्फ महर देना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर इनकार औरत ने किया है तो फिर यहां भी वही दो सूरतें कि खावंद या सोहबत कर चुका होगा या सोहबत से पहले ही ये मुसलमान हुआ है, तो फिर अगर खावन सोहबत कर चुका है तो फिर इस सूरत में पूरा महर देना पड़ेगा। जुदाई का सबब अगरचे औरत बन रही है, वो इनकार कर रही है इस्लाम से, लेकिन फिर भी महर तो पहले का ही पक्का हो चुका है, क्योंकि खावन सोहबत कर चुका है, लिहाजा पूरा महर देना पड़ेगा खावन को। लेकिन अगर ये औरत ने जो इस्लाम से इनकार किया है, यह सोहबत से पहले है, सोहबत से पहले ही खावन मुसलमान हो गया था और अब औरत इनकार कर रही है मुसलमान होने से, तो अब इस जुदाई का सबब औरत बन रही है, और औरत जुदाई का सबब बने सोहबत से पहले तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो जो निस्फ महर है वो भी साकित हो गया, क्योंकि ये जुदाई किसकी तरफ से आई, औरत की तरफ से आई है। तो लिहाजा यहां पर अगर इनकार औरत ने किया है और सोहबत हो चुकी है तो फिर तो पूरा महर ही देना पड़ेगा खावंद को, और अगर इनकार औरत ने किया है और सोहबत से पहले किया है तो फिर औरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं सुम्म इदा फर्रकल काजी बैनहुमा भी इबा इहा, फिर जब काजी इन दोनों के दरमियान जुदाई करवा दे भी इबा इहा, उस औरत के इनकार की वजह से, फलाहल महरु इनकान दखल बिहा, तो उस औरत के लिए पूरा महर होगा अगर खावंद उसके साथ सोहबत कर चुका है, लिताअक्कुदिही बिद्दुखूली, इसलिए क्योंकि औरत का महर पक्का हो चुका है सोहबत करने की वजह से, तो पूरा महर मिलेगा। जुदाई का सबब अगरचे औरत बन रही है लेकिन महर तो पहले ही का पक्का हो चुका है सोहबत की वजह से। वइल्लम यकुन दखला बिहा, और अगर खावन ने इसे सोहबत नहीं की है, फला महरा लहा, तो फिर इस सूरत में इस औरत को महर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जुदाई का सबब औरत बनी है भाई। कहते हैं लिअन्न अल-फुर्क़ता मिन क़िबलिहा, इसलिए क्योंकि ये जुदाई औरत की जानिब से आई है, वल महरु लम यतअक्कद, और हाल यह है कि महर अभी पक्का नहीं हुआ, महर अभी पक्का नहीं हुआ था, सोहबत नहीं की थी और जुदाई औरत की तरफ से आ गई, तो फिर उसको महर नहीं मिलता। फाश बहर रिद्दत अवल मुतावाता, तो ये मुशाबे हो गया मुर्तद होने के और मुतावात के। मुर्तद होना भाई, आप पढ़ चुके हैं कि अगर औरत मुर्तद हो जाए और खावन सोहबत कर चुका है फिर तो पूरा महर ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर औरत सोहबत से पहले मुर्तद हो गई तो अब यह जुदाई किसकी तरफ से आई? औरत की तरफ से आई, लिहाजा वो निस्फ महर भी अब औरत को नहीं मिलेगा भाई। इसी तरह मुतावात का लफ्ज आया यहां पर, मुतावात भाई तावा युताव्या मुतावातन का माना है साथ देना, मुआफकत करना। मसलन एक शख्स की बीवी है, वो उसी शख्स के बेटे के साथ गलत ताल्लुकात कायम कर लेती है। एक आदमी है, उसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, तो उसकी एक बीवी दूसरी बीवी का जो बेटा है उसके साथ गलत ताल्लुक कायम कर लेती है, तो इसको कहते हैं मुतावात, यानी साथ देना। मुतावात का क्या माना? साथ देना। तो उस औरत ने भी क्या किया? खावन के बेटे का साथ दिया है इस गलत ताल्लुक के अंदर, यानी सोतेली मां ने अपने सोतेले बेटे के साथ गलत ताल्लुक कायम कर लिया, तो ये मुतावात है। और इस सूरत में भी याद रखो, ये औरत इस आदमी पर यानी अपने खावन पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई। एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया था, औरत ने अपने सोतेले बेटे के साथ यानी इसी आदमी का दूसरी बीवी से जो बेटा है उसके साथ गलत ताल्लुक कायम कर लिया, तो इस सूरत में ये जो औरत है ये अपने खावंद के लिए बहू के दर्जे में हो गई, क्योंकि इस आदमी के बेटे के साथ ताल्लुक कायम किया है, और बेटे की बीवी क्या होती है? बहू। तो ये बहू तो नहीं क्योंकि उसने निकाह तो नहीं किया, लेकिन उसी के दर्जे में हो गई, यानी वही हुर्मत मुसाहरत वाला मसला आ गया। मैंने बतलाया था हुर्मत मुसाहरत ससुराली रिश्तों की वजह से जो हुर्मत आती है, तो यह औरत बहू के दर्जे में हुई, तो यह अपने खावंद पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई। तो इस मुतावात के अंदर भी अगर यह मुतावात हुई है खावंद के सोहबत करने के बाद, खावंद इस बीवी से सोहबत कर चुका था, उसके बाद उसने गलत ताल्लुक कायम किया है उसके बेटे के साथ, तो फिर सोहबत की वजह से तो महर पहले ही पक्का हो चुका है, वो पूरा महर देना पड़ेगा। लेकिन अगर यह मुतावात उसने सोहबत से पहले की है तो फिर इस सूरत में इस जुदाई का सबब औरत बनी है, जुदाई इस औरत की वजह से आई है, लिहाजा अब इसको निस्फ महर नहीं मिलेगा भाई। सोहबत से पहले जुदाई आई है तो निस्फ महर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि औरत खुद उस जुदाई का सबब बनी है। तो यहां पर भी ये जो इस्लाम से इनकार किया है, अगर सोहबत से पहले इनकार किया है तो इस औरत को भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जुदाई उसकी तरफ से आई है। तो ये माना है लिअन्न अल-फुर्क़ता मिन क़िबलिहा, इसलिए क्योंकि जुदाई इस औरत की जानिब से आई है, वल महरु लम यतअक्कद, और हाल यह है कि महर अभी पक्का नहीं हुआ, फअशबहर रिद्दता वल मुतावअता, तो इस औरत का ये इनकार मुर्तद होने और मुतावात के मुशाबे हो गया, और मुर्तद होने और मुतावात के अंदर तो सोहबत से पहले अगर मुर्तद होना या मुतावात हो तो औरत को कुछ नहीं मिलता, तो यहां सोहबत से पहले इबा पाया जाए तो भी औरत को कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।